ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसः तासामाविर्भूक्षौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः तम् विलोक्यागतम् प्रेष्ठाम् प्रत्युत्फुल्लदृशोबलः उत्तस्थुर्युगपत् सर्वः तन्वः प्राणमिवागतम्। अब छह श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि किस गोपी ने भगवान के साथ किस भाव से किस प्रकार मिलन किया। काचित् कराम्बुजम् शौरेः जगृहे अञ्जलिना मुदा काचिद्दधार तद्बाहुम् अंसे चन्दनरुषिताम् काचिदञ्जलिना गृह्णात् तन्वी ताम्बूलचर्बिताम् तन्वी ताम्बूलचर्वितम् एका तदङ्घ्रिकमलम् सन्तप्तास्तनयोरधात् एका भ्रिकुटिमाबध्य प्रेमसंरम्भविह्वला घ्नति वैक्षत्कटाक्षेपैः सन्दष्टदशनच्छदा अपरान्निमिषदृग्भ्याम् जुषाणा तन्मुखाम्बुजाम् आपीतमपि नातृप्य सन्तस्तच्चरणम् यथा तम् काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदीकृत्य निमील्य च पुलकाङ्गुपगुह्यास्ते योगीवानन्दसम्प्लुता सर्वास्ताः केशवालोक परमोत्सवनिर्वृतः जहुर्विरहजम् तापम् प्राज्ञम् प्राप्य यथा जनः ताभिर्विधूतशोकाभिः भगवानच्युतो वृतः व्यर्वोचताधिकम् तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा। तासाम तथा रुदती नाम इस प्रकार रोती हुई गोपियों के समक्ष आविहि प्रकट अभूत हुए शौरिहि सुर वंश में उत्पन्न श्री कृष्ण स्नयमान मुखाम्बुज मंद मुस्कान से युक्त मुखार बिंद वाले पीताम्बर धरह पीताम्बर को पकड़े हुए श्रग्वी वनमाला धारण किए हुए साक्षान मनमथ मनमथ साक्षात कामदेव के मन को भी मथने वाले तासाम तथा रुदती नाम अर्थात अधुना मद्दुख संभावनया दैन्य विशेषेण आसाम रोदनात् प्राणा गत प्राया इति तेन वितर्क माणा नाम मध्य तासम का अर्थ है कि जो इस प्रकार से गोपियां रो रही थी कृष्ण विरह में तो भगवान ने सोचा कि इस समय मेरे चरण कमल में अच्छे दुख की संभावना करके गोपियां मेरे लिए रो रही हैं लगता है इनके रोने से अब प्राण निकल जाएंगे इनके शरीर से ये सोच करके श्री कृष्ण तुरंत उनके बीच प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण के उस समय के छवि का उनके भाव का वेशभूषा का श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं स्मयमान मुखाम्बुज मुखाम्बुज श्री कृष्ण का सुंदर मुख कमल के समान विकसित है। इसके द्वारा यह सूचित हो रहा है कि श्री कृष्ण को वन में कोई दुख नहीं हुआ है। मुखाम्बुज मुखाम्बुज मुख कमल और वो भी स्मयमान मुस्कान फूट रहा है भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से प्रसन्नता आनंद से मुख खिल रहा है इस तरह से प्रकट हुई स्मयमान मुखाम्बुज क्यों हंस रहे हैं इसके पीछे कई कारण हैं इसको बाद में मैं पढ़ूंगा। मुख्य कारण है स्मयमानम तासाम आनंदार्थमेव श्री गोपियों को मेरा हंसता हुआ मुख देख करके आनंद होगा ये तुरंत रोना छोड़ देगी और खिल जाएंगी सुखी हो जाएंगी मेरा सुख देख करके इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं अपने बदन कमल को प्रफुल्लित किए। तो सिर्फ श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि मुखाम्बुज केवल खिला हुआ है हृदयाम्बुज तो गोपियों के रोने को देख करके खिला हुआ नहीं है भगवान भी रोने जैसा हो रहे हैं कि अपनी प्रियाएं अगर इस तरह से रो रही हैं यद्यपि मिथ्या दुख की संभावना करके रो रही हैं फिर भी रो रही हैं तो इसको देख करके भगवान कैसे हंस सकते हैं। लेकिन अगर वे भी मुरझाए हुए मुख कमल से आते तो गोपियों को और अधिक कष्ट होता और उनके प्राण निकल सकते थे इसलिए भगवान उन्हें सांत्वना देने के लिए उनको आनंदित करने के लिए प्रफुल्लीकृत मुखाम्बुज से प्रकट हुए। तासाम आनंदार्थम एव प्रफुल्लीकृतम मुखाम्बुजम एव हृदयम्बुजम तो हृदयम्बुजम तो संतप्तम एव तासाम ताद्रिग आरती रोदनात् अथवा श्रीकृष्ण के मुख पर स्मयमानता मुस्कुराहट तो स्वभावतः है वह इत्यर्थ तो स्वाभाविक रहता है। पीताम्बर धरह से केवल पीताम्बर कह दिया जाए तो उसका अर्थ होता है कि पीते अम्बरे जस्य सह पीताम्बर, जिसके दोनों वस्त्र धोती और दुपट्टा ये पीले हैं वो है पीताम्बर। भगवान का नाम ही है पीताम्बर, तो पीताम्बर धरह कहने की क्या आवश्यकता है। पीताम्बर का अर्थ ही है श्री कृष्ण, जिनका पीला वस्त्र है। भगवान श्री कृष्ण पीत वर्ण बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी का वो रंग है, इस कारण से उसको बहुत पसंद करते हैं पीत वर्ण। तो श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का एक नाम ही है पीताम्बर अपने आप। वैसे भगवान और भी रंग के कपड़े कभी कभी बदलते हैं, पहनते हैं, लेकिन मुख्य रंग जो उनको पसंद है वो है पीला पीताम्बर। भगवान काला साला वस्त्र नहीं पहनते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे अमावस्या के दिन भले पहनते हैं कभी वन में जाने के लिए कि छिप जाए अंधकार में, पता ही न चले किस वन में गए किधर गए। भगवान पीताम्बर पहनते हैं। तो यहां पर असल सुखदेव गोस्वामी भगवान का दर्शन करते हुए मन ही मन बता रहे हैं पीताम्बर धर, श्री कृष्ण पीताम्बर को धरे थे। इसका अर्थ है कि वे अपने कंधे में ऐसे पीताम्बर को लटका लिए थे और दोनों हाथ से पकड़े थे, ऐसे ऐसे पकड़े थे जैसे कभी कभी कोई गमछा लटका करके पकड़ता है, पकड़े थे। और यह जो मुद्रा है दोनों हाथों से कपड़ा पकड़ना, या कोई कोई अपनी पगड़ी उतार करके हाथ में रख लेते हैं, यह क्षमा याचना की एक मुद्रा है। तो मानो श्री कृष्ण ने श्री गोपी जनों से क्षमा मांगने के लिए पीताम्बर धरे हैं, पकड़े हैं, अथवा बहुत वेग से चले कुंज से पेड़ों की आड़ से बहुत जल्दी चले कि अगर मैं नहीं पहुंचता हूं तो श्री गोपियों का प्राण जा सकता है, इसलिए जल्दी चले। और इस कारण से पीताम्बर फहरा गया, तो एक हाथ से पकड़े पकड़े आ रहे हैं पीताम्बर, बाएं कंधे पर लटका हुआ है उसको पकड़ करके चल रहे हैं। अथवा पीताम्बर धरह का अर्थ धरा, जिनका पीताम्बर धरा पर भी रगड़ खाता हुआ चल रहा है, वो एक हाथ से पकड़े से पीताम्बर, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी आने में धरा पर चल रहा था पीताम्बर का छोर, इसलिए उनको पीताम्बर धरह कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि पीताम्बरस्य एक देशो धरा स्थितो जस्य सः, जिनके पीताम्बर का एक छोर एक अंश धरा पर पृथ्वी पर आ रहा था, भगवान को संभालने की शुद्धि नहीं थी, इस तरह से आ रहे थे। पीताम्बर धरह, पीताम्बर को पकड़कर क्यों आ रहे हैं, आगे श्रीपद सनातन गोस्वामी बताते हैं कि गोपियों के बहते हुए अश्रु धारा का मार्जन करने के लिए, पोछने के लिए पीताम्बर पकड़कर आ रहे हैं। पीताम्बर तो उनके कंधे पर है ही, लेकिन हाथ से पकड़े हुए हैं। धरने का मतलब ये नहीं कि देह में धारण करना, धरह का हाथ से पकड़े हैं, ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है हिंदी में, धरना, धरिए इसको, रखिए, धरह, पीताम्बर धरह। श्रगवी अरे वनमाला धारण किए हैं, वही वनमाला जो श्रीमती राधा रानी ने पहनाया था। इसके द्वारा मानो भगवान यह सूचित कर रहे हैं कि हे प्रिय, यह तुमने मुझे माला धारण कराई है, इतना प्रिय है जितना तुम प्रिय हो, इसलिए मैं इसका संग नहीं छोड़ा। और पीताम्बर धारण किए हैं, शरीर पर लपेटे हैं, तो ये भी सिद्ध कर रहे हैं कि हे प्रिय श्री राधे, जो तुम्हारे वर्ण का कपड़ा है इसलिए मैं तुम्हारी याद में हमेशा इसको धारण किए रहा, कभी छोड़ा नहीं, मैं भूला नहीं हूं। कई भाव है आगे आ रहे हैं। साक्षण मनमथ मनमथ, इस अवसर पर श्याम सुंदर अपनी पूर्ण सुंदरता को व्यक्त किए हैं। कई बार श्रील सुखदेव गोस्वामी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, साक्षण मनमथ मनमथ, साक्षात का अर्थ मूर्तिमान, कामदेव अमूर्त है। जब से भगवान शिव ने उसको जला दिया अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से, तब से कामदेव का कोई रूप नहीं है। बिना शरीर के ही सभी प्राणियों के हृदय में यह व्याप्ता है और उन्हें उनके मन को मथ देता है, पीड़ित करता है, काम वासना से भर देता है। यह एक देवता है और समस्त शरीरधारियों के भीतर परमात्मा की तरह यह भी रहता है, देवताओं के हृदय में भी, सब जगह। तो इसको मनमथ कहा गया है। अमूर्त रूप से छिप करके रह करके जब सारे जगत के प्राणियों के मन को मोह लेता है, मथ देता है, तो फिर वही कामदेव यदि साक्षात हो जाए, स्वयं प्रकट हो जाए, तो कितना सुंदर होगा और किसको नहीं मोहित कर सकता है। लेकिन ऐसा साक्षात कामदेव को, कामदेव भी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य से मोहित हो गया, मूर्छित हो गया। साक्षात कामदेव को भी मोहित करने वाला मतलब महा आकर्षक, महा मधुर, महा सुंदर स्वरूप भगवान ने प्रकट किया है। तो स्मय मान मुखम बुझ, इस श्लोक की व्याख्या करते हुए श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, स्मय मान शब्द से भगवान के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। कितने सुघर हैं, कितने सुंदर हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और सक्षण मनमथ मनमथ शब्द से सब कुछ मिला करके कहना, तो पहले तो बिल्कुल शारीरिक सौंदर्य, इसमें मान मुखम ये उपलक्षण है, हंसता हुआ मुख कमल, इसके द्वारा हस्त कमल, चरण कमल या नयन कमल, भगवान के अलग आदि का वर्णन अपने आप समझ लेना चाहिए। और स्रगवी से भगवान के वेशभूषा का वर्णन किया जा रहा है, वेश उपलक्षण है। अरे वनमाला धारण किए हैं तो इससे अपने आप सब कुछ समझ लेना चाहिए। जो जो धारण करते हैं, जैसे कुंडल, बाजूबंद, अंगूठियां और भी जो भी मोरपंख, ये सब धारण करते हैं, तो केवल स्रग्वी शब्द द्वारा पहने गए अन्य श्रृंगार और आभूषण का वर्णन कर दिया गया, अपने आप समझना चाहिए। और पीतांबर धर, पीतांबर शब्द से भगवान के वस्त्र का वर्णन किया जा रहा है, पर इसके साथ उस समय के जो भी उचित विलास हो सकते हैं उसका वर्णन किया गया। विलास का अर्थ होता है तत्कालिक चलना, गति, उपवेशन, बैठना, चलना और देखना, आंखों पर विशेष प्रकार का भाव आना और मुख का प्रफुल्लित होना, इसके बाद कुछ बोलना, कुछ विशेष दृष्टि से देखना, इसको विलास कहा जाता है। तो स्रग्वी शब्द के द्वारा अन्य विलासों का भी वर्णन हो गया। स्रक का अर्थ होता है माला और स्रग्वी का अर्थ है माली, वन माली, साक्षात मनमत मनमत। इसके बाद भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप, कोटि कोटि कामदेव को भी मूर्छित करने वाला, मोह लेने वाला रूप भगवान का है, कौन नहीं मोह गया। अथवा मन मथ का अर्थ होता है कामदेव और वैसे मन का भी अर्थ कामदेव होता है। तो कामदेव को मथने वाला कौन है? वह है भगवान शिव। कामदेव को जला दिए, मथ दिए, खत्म कर दिए, तो उनको ही मनमथ कहा जाता है। लेकिन शिव जी के भी मन को मोहने वाला यह रूप है। शिव जी के भी मन को भगवान ने मथ दिया था, केवल मेकअप करके स्त्री बन गए थे मोहिनी के रूप में, इसी पर शिव जी दीवाना हो गए एकदम। तो जब शिव जी भी मोहित हो सकते हैं, तब तो अन्यों का कहना ही क्या, सारा जगत काममय हो जाता है श्री कृष्ण के वंशी को सुन करके और श्री कृष्ण की कथा को सुन करके। काममय का अर्थ है कृष्ण कामनामय, कृष्ण भावनामय, कृष्ण प्रेममय हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु इस बात को एक बहुत बड़े गीत में गाए हैं। और जो वैष्णव को मंत्र दिया जाता है जिसको काम गायत्री कहते हैं, तो उस काम का वास्तविक अर्थ है मदन गोपाल, वास्तविक काम श्री कृष्ण है, चिन्मय दिव्य काम, जो किसी के कामना को इच्छा को कंट्रोल करते हैं, दिव्य इच्छाओं को। जब किसी व्यक्ति में श्री कृष्ण को भोगने की इच्छा हो, श्री कृष्ण को देखने की, श्री कृष्ण के आलिंगन की, कृष्ण के बांसुरी गीत को सुनने की, उनकी सेवा करने की, उनके साथ नृत्य करने की, या किसी प्रकार की अगर इच्छा हो, उत्पन्न हो, तो इस इच्छा का सैंक्शन अप्राकृत मदन मोहन के द्वारा होता है। वही वास्तव में वो कामना पैदा करते हैं। यह जो प्राकृत काम है, ऐसी इच्छा पैदा नहीं कर सकता है। यह प्राकृत काम देव यह केवल संसार को भोगने की, सुनने की, देखने की, टच करने की, इन सब कामनाओं को उत्पन्न करता है। यह बहुत निकृष्ट है। लेकिन वास्तविक मदन मोहन, मदन गोपाल तो श्री कृष्ण है, जो भक्तों की इंद्रियों को अप्राकृत बना देते हैं और अपने रूप गुण लीला आदि को सुलभ कराते हैं इंद्रियों। तो साक्षात मनमथ मनमथ श्री गोपियों के सामने ही भगवान का यह स्वरूप प्रकाशित होता है, सबके सामने नहीं। यद्यपि अन्य के सामने भी जो श्री कृष्ण का स्वरूप व्यक्त होता है वह भी महामादक होता है, लेकिन सर्वोपरि रसिकता, मादकता, मधुरता, सौंदर्य गोपियों के सामने ही प्रकट होता है। श्री कृष्ण के रूप को देख करके तो पक्षी भी मोहित हो जाते हैं, बांसुरी के गीत को सुनते हैं और आंखों से श्री कृष्ण को देखते रहते हैं, गौएं कानों से गीत वेणु गीत सुनती हैं और आंख से श्री कृष्ण को देखती रहती हैं, और श्री कृष्ण जब उन्हें सहलाते हैं तो उसे स्पर्श के सुख के माधुर्य में डूबती हैं, हरिण देखते हैं वे प्रेम विभोर हो जाते हैं, देवताओं की स्त्रियां विमानों से देखती हैं, तो वहीं पर कृष्ण मिलन की इच्छा से मूर्छित हो जाती हैं अपने पति की गोद में ही। और पति इसमें दोष दृष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि देवता सब बहुत उच्च कोटि के भक्त होते हैं, अगर उनकी पत्नी भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हो रही है तो वे अपना हो भाग्य मानते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये वेणु गीत में वर्णन किया गया है। और वे अपनी पत्नियों को लेकर के प्रतिदिन वृंदावन आते हैं देवता लोग, वैसा पति चाहिए जो अपनी पत्नी को वृंदावन ले जाए, भगवान का दर्शन कराए, है ना। देवता लोग प्रतिदिन लाते हैं, क्योंकि उनके यहां ये सब जॉब करना, काम धंधा करना, फैक्ट्री दुकान चलाना, ये सब कुछ नहीं है देवताओं के यहां। वहां कोई किचन भी नहीं है, कभी भोजन बनता नहीं, लोग अमृत पीते हैं और कल्प वृक्ष का फल खाते हैं, तो भोजन बनाने की भी कोई चिंता नहीं, सब कुछ सुलभ है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, बहुत विशाल सुख है स्वर्ग का, ये देवता प्रतिदिन वृंदावन आते हैं भगवान की लीला में, ये वर्णन है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तेसाम आविर्भूत छौरी, तासाम आविर्भूत छौरी, उनके बीच प्रकट हुए श्री गोपी जनों के, किनके, तासाम। तासाम शब्द से पहले की घटना लेनी चाहिए, रुरुदुह सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इसलिए श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं रुदती नाम मध्य आविह अभूत। तासाम का अर्थ जो रो रही थी, क्यों रो रही थी, कृष्ण के दुख की संभावना करके रो रही थी। चरण कमल में पत्थर और त्रिणांकुर लग रहे हैं और लगने से प्रियतम को बहुत वेदना हो रही है, ये सोच करके रो रही है। और ऐसा लगा श्याम सुंदर को कि अब इनके प्राण नहीं रहेंगे, तो तत्काल दौड़ करके आ गए। तो आचार्य जी कहते हैं कि भगवान कैसे आए, क्या वो मध्य में प्रकट हो गए, नहीं वे दौड़े हुए आए, जो आगमन का क्रम था उसी तरह से आए। तो श्री गोपियों ने उनको देखा, तम विलोक्या गतम प्रेष्ठम प्रत्युत फुल्ल दृशो बलाह उत्तस्थिर जुगपत सर्वाह तन्वह प्राण निवागतम। तन्वह आगतम प्राणमिव, तन्वह जैसे शरीर के अंग हैं कर चरण आदि, ये शरीर के अवयव, तो जैसे प्राणों के विजुक्त होने पर ये अपनी अपनी प्रवृत्ति से शून्य हो जाते हैं, कोई क्रिया नहीं करते, हाथ काम नहीं करता है, पैर चलता नहीं है, परंतु प्राणम आगतम इव, जब ही शरीर में प्राण आ जाता है तभी हाथ पैर आदि अंग काम करने लगते हैं, एक साथ ही काम करने लगते हैं, चेतनीभूत होते हैं। इसी प्रकार तम प्रेष्ठम विलोक्य और भी आगतम विलोक्य, अपने प्रेष्ठ को, अपने प्राणार्बुद प्रिय श्याम सुंदर को आगतम विलोक्य, आया हुआ देखकर जुगपत सर्वः उत्तस्थु सर्वा। श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर सर्वा, सारी गोपियां एक साथ उत्तस्थु उठकर खड़ी हो गई। उत्तस्थु, तस्थु का अर्थ भी होता है खड़ा होना, लेकिन उत्तस्थु का अर्थ उठ करके खड़ी हो गई आनंद से। तन्नोह प्राण निवागतम, जैसे शरीर में प्राण का संचार हो गए, हो जाने पर सारी इंद्रियां एक साथ उठ जाती हैं। इस तरह से यद्यपि अबला है, छीण हो गई थी रोते रोते दुख में, उठने की शक्ति नहीं थी, इतना दुख होता है श्याम सुंदर के विरह में, तो उस दुख से बिल्कुल दुर्बल हो गई थी, अबला हो गई थी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं महाराज परीक्षित से कि उनका बल समाप्त हो गया था, निर्बल हो गई थी, लेकिन श्रीकृष्ण को देख करके इतना आनंद हुआ कि एक साथ सब खड़ी हो गई। तो विलोक्य, विलोक्य का अर्थ है विशेषण लोक्य, लोकन का अर्थ ही होता है देखना, लेकिन विशेष रूप से देखी। रो रही थी, रोने से आंखों में आंसू छाया था और आंखें मलिन हो गई थी, मलिन का अर्थ है मतलब अश्रु कलिल, तो साफ नहीं देखी, पर ये पहले देखी कि श्याम सुंदर आ रहे हैं, आ गए, तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, साफ नहीं देखी, तो एकाएक ये स्फूर्ति मन में विचार हुआ कि स्फूर्णा हो रही है, सब मन में ध्यान हो रहा है, तो विशेष ध्यान से देखी। इसीलिए श्रील सुखदेव जी कहते हैं विलोक्य विशेषण लोक्य, विशेष रूप से देखी तो देखिए अरे हमारे प्रियतम आ गए, तो बस इतने से इतना आनंद हुआ कि तुरंत उठकर खड़ी हो गई। उदाहरण दे रहे हैं एक साथ सब खड़ी हुई इस विषय में, ततः तन्वह आगतम प्राणमिव अर्थात तन्वह कर चरणादय शरीरावयवय अवयवा यथा विजुक्ते प्राणे पुनरागता पुनरागत्य सुस्थे सति उत्तिष्ठते तद्वत् अर्थात आगतम प्राणम प्राप्य तनवः कर चरणादय जथा जुगपत उत्तिष्ठन्ति तथा प्रेष्ठम प्रियतमम श्रीकृष्णम तम श्रीकृष्णम आगतम तासम अभिप्रायानुसारेण समागतम किंवा तासम मध्य प्रादुर्भूतम जद्वा आदौ पूरे प्रादुर्भूय आगमन क्रमेण निजान्तिकम प्राप्तम संतम विलोक्य विशेषेण लोकयित्वा दृष्ट्वा इति रोदन वैवस्येन ईषद दर्शने अप्यनिश्चयात् किंवा दृष्टेपि परमार्थ्या विश्वासाभावात् सम्यक निरीक्ष्य एव इति अर्थ प्रतीत फुल्ल दृशः प्रत्या प्रकर्षेण उच्चै फुल्लः विकसितः दृशः नेत्राणि जासान् तथा भूता सत्य सर्वाः अबलः विरह क्षामतया उत्थातुम असमर्थाय अपि जुगपत एक दैव उत्तस्थ। एक एक शब्दों का बहुत महत्व है। श्रील सुखदेव गोस्वामी क्यों वही शब्द बोल रहे हैं इस पर आचार्य गण टीका लिखें। तो श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं आगतम इति तासम अभिप्रायानुसारेण। गोपियों को क्या, गोपियों का क्या अभिप्राय था कि प्रियतम आवे जल्दी आवे जल्दी आवे, तो उनकी इच्छा के अनुसार ही श्रीकृष्ण आए। जदवा तासम मध्य प्रादुर्भूतम इत्यर्थ अथवा अकस्मात उनके बीच प्रकट हो गए किंवा आदौ दूरे प्रादुर्भूय अथवा शुरू में दूर में प्रकट होकर के और फिर आने लगे। आदौ दूरे प्रादुर्भूय आगमन क्रमेण निजान्तिकम प्राप्तम संतम प्रेष्ठम तथा विष्णु पुराणे अपि। श्रीपाद सनातन गोस्वामी विष्णु पुराण से उद्धृत कर रहे हैं कि विष्णु पुराण में वर्णन है ततो ददृशुरायांतम विकास मुख पंकजम। श्री गोपियों ने देखा आयांतम आते हुए प्रियतम को श्याम सुंदर को जिनका मुख कमल खिला हुआ था। विकासी मुख पंकजम, श्रीकृष्ण वन से आ रहे थे लेकिन कोई वन से प्रकट हो रहे थे लेकिन मुख खिला हुआ था, मुख पर कोई दुख की रेखा नहीं थी। इति अतएव विशेषेण लोकयित्वा दृष्ट्वा इति रोदन वैवस्येन ईषद दर्शने अप्यदर्शनात्। रोदन से विवश थी, आंखों में आंसू भरा हुआ था और कई तरह से शरीर विकृत था, कपी थी, पुलक था शरीर में, वाणी गदगद थी, कई तरह से तो आंखों में आंसू छाया था। इसलिए ईषद दर्शने अपि अदर्शना, थोड़ा थोड़ा देखा उस गोपियों ने पहले लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं देख पाए। केवल दृष्टेपि परमार्थ्या विश्वासाभाव अथवा देख करके भी परम आरती परम दुख के कारण विश्वास नहीं हुआ कि वही आ रहे हैं। इसलिए सम्यक निरीक्ष्य एवं इत्यर्थ विलोक्य, इसलिए ध्यान से देखा श्री गोपी जनों ने तो पहचान लिया हमारे प्रियतम ही आ रहे हैं, तब तो खड़ी हो गई। अतः प्रीत्या प्रहर्षेण उच्च ही फुल्ला विकसिता दृशो नेत्राणी जासम तथा भूता सत्य अबलाह विरह क्षामतया उत्थातुम असमर्था अपि सर्वा जुगपत उत्थिता। एक साथ खड़ी हो गई और तत्र हेतु क्यों खड़ी हो गई, क्यों क्या उन्हें इतना आनंद प्राप्त हुआ कि शरीर में अकस्मात बल आ गया और वे जो रो रही थी विकसित मुख वाली हो गई और उठ करके खड़ी हो गई। तो कहा तत्र हेतु प्रेष्ठम इति, प्रेष्ठम तदेक प्रेष्ठत्वे न मरणे जीवने च तदेक हेतुत्वात्। वे परम प्रिय हैं और उनका विरह ही मरण है और उनसे मिलन ही जीवन है। कृष्ण के साथ होकर के ही वे जीवित रह सकती हैं और कृष्ण के नहीं होने पर मरण निश्चित है। जीवन में मरण में श्री कृष्ण ही कारण है। तो श्री कृष्ण का अदर्शन मरण का कारण है और श्री कृष्ण का साथ में होना जीवन का कारण है। तो परम प्रिय यही कारण है कि उनके सान्निध्य में आते ही वे तुरंत उठकर खड़ी हो गई, स्वस्थ हो गई। ननु तथापि अंत दशा प्राप्ता नामी व तासाम सद्य एकदा तथोत्थानम कथम संभवित। लेकिन प्रश्न होता है कि वे दसवीं दशा को प्राप्त थी, मरे जैसे उनकी हालत हो रही थी, तो श्री कृष्ण को देख करके एक साथ ही में सब कैसे खड़ी हो गई, इसी को वे एक दृष्टांत के द्वारा वर्णित कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तन्मय थी जदवा आदौ प्रीत्युत्फुल्ल दृश्यो बभुवु पश्चात उत्तस्थ। अथवा श्रीपा सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं, पहले प्रीति उत्फुल्ल मुखा हुई, पहले उनके नेत्र विकसित हुए खिल गई और बाद में खड़ी हुई। जो भी हो, इस तरह से श्री कृष्ण प्रकट हुए। जथा तनूनाम अपि आदौ स्पंदनादि पश्चात। यदि शरीर में प्राण आता है तो पहले शरीर में स्पंदन होता है, शरीर हिलते हैं, बाद में अपना अपना काम करने लगते हैं इंद्रियां। पश्चात स्वस्व कृत्य प्रवृत्ति रीति आगतम इति पुनरुक्त्या उत्थाने आगमनैक हेतुता बोधिता। जब यह कह ही दिए कि भगवान उनके बीच में प्रकट हुए, तो फिर आगतम क्यों कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? श्री गोपीजनों के पुनरुत्थान में, उनके उठने में भगवान का आगमन ही कारण है, केवल आगमन कारण है, इसीलिए इसको कहने के लिए आगतम कह रहे हैं। केवल प्रादुर्भाव मात्र से कहने संतोष नहीं हुआ। गोपियों के जीवन में एकमात्र सुख है श्रीकृष्ण का होना, तो श्रीकृष्ण का आगमन एकमात्र कारण था उनको उत्थित करने में, तो इसलिए उदाहरण दिए। शूल जीव गोस्वामी प्राजी बात ध्यान से सुनिए, आप लोग सुनना चाहिए तंद्रा छोड़ करके। शब्द नहीं भी समझ में आवे फिर भी वो शब्द दिव्य होता है, अप्राकृत होता है। आगतम आदौ समुत्कंठया सद्य एव दूरे प्रादुर्भूय। श्री गोपीजनों ने देखा पहले श्रीकृष्ण अति समुत्कंठा से दूर में प्रादुर्भूत हुए। श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं भगवान दूर में प्रकट हुए और दूर में प्रकट होकर के आगमन क्रमेण, आगमन क्रम से। आगमन क्रम का क्या यहां अर्थ है? ठीक जैसे वे झूमते हुए चलते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं, यहां पर आगमन क्रम का अर्थ है बहुत जल्दी जल्दी आना। पहले प्रकट हुए, अपनी प्रियाओं के पास दौड़ करके आने लगे। आगमन क्रमेण निजांतिकम प्राप्तम संतम। गोपियों ने पहले देखा उनको और यह भी देखा, आते हुए भी देखा, और बिल्कुल जब निकट आ गए तो वे खड़ी हो गए। तथा च विष्णु पुराणे ततो ददृशु रायांतम विकास मुख पंकजम। अतएव विशेषेण लोकयित्वा दृष्ट्वा इति रोदन वैवस्येन। वही लीला कह रहे हैं। तत्र प्रादुर्भूते सति जद अभूत तदाह। भगवान श्रीकृष्ण जब प्रकट हुए तब क्या हुआ, इसको सुखदेव जी कह रहे हैं। आगतम आविर्भूतम नतु कुतश्चिद आयातम। इसका एक अर्थ यह भी है कि आविर्भूत का अर्थ है वहीं प्रकट हो जाना, कहीं से आए नहीं। और इसका वास्तविक अर्थ यह है कि किसी कुंज में, लता आदि की ओट में श्रीकृष्ण खड़े होकर के और श्री गोपियों का ये रोना देख रहे थे, सुन रहे थे, तो जब बिल्कुल रोने लगी तो तुरंत ही वहीं से प्रकट हो गए, तो कहीं से आए नहीं, वहीं से प्रकट हो गए। एक अर्थ श्रीपाद जी को समझ करते हैं, नहीं दूर में प्रकट होकर के और धीरे धीरे आए, जो तेजी से आए। और एक अर्थ है नहीं वहीं प्रकट हो गए, अथवा कुंज के वो सेना आकर गोपियों के ठीक मध्य में प्रकट हो गए भगवान, तो सर्व समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। न कुतश्चित आयातम तत्रैव अंतर्झार्ज अस्थितत्वात्, वो वहीं पर अंतरहित थे, अंतरहित थे, अपने को नहीं दिखा रहे थे, फिर दिखाने लगे। अबला अपि उत्थान समर्थ उत्थान ने अबला अपि उत्थाने असमर्था अपि उतस्थ जुगपत इति दर्शनस्य पर्वा पर्याभावात् एकस्य एव प्रतीकम् पुरतो भासमानत्वात् इति। तो ठीक है, तो इस पर प्रश्न होता है कि श्री गोपी जनों ने श्याम सुंदर को देखा होगा तो आखिर कुछ तो पर्वा पर्व हुआ होगा, कुछ तो कोई तो पहले देखी होगी, एक मिनट पहले या कुछ सेकंड पहले, उसके बाद किसी ने देखा होगा, किसी ने देखा होगा, सब एक ही बार देखी। क्या श्याम सुंदर को सबने एक ही बार देखा? हाँ, एक ही बार देखा। कारण क्या था कि श्री कृष्ण इतने घबरा गए, वो जितनी गोपियां थी उनके सामने अपने को प्रकट की, एक साथ ही प्रकट की। जैसे संसार में भी आप देखिए, मान लीजिए कई दर्पण हो और कोई वस्तु सामने रखी जाए तो प्रत्येक दर्पण में एक ही साथ प्रतिबिंबित हो जाएगी, ये बारी बारी से प्रतिबिंबित होगी, ऐसी बात नहीं, एक ही वस्तु सब जगह आएगी। तो श्रीकृष्ण गोपियों के सांत्वना के लिए, उन्हें सुख देने के लिए अपने ऐश्वर्य शक्ति से, अपनी ईश्वरताई से, अपनी महिमा से प्रत्येक गोपी के सामने एक ही बार प्रकट हो गए, इसलिए वे एक ही समय में खड़ी हो गई। एक अद्भुत उदाहरण है, कोटि कोटि गोपी जन एक साथ खड़ी हो गई, उनमें कोई भी पूर्वा पर पूर्व और अपर पौर्वा पर इसको कहते हैं कि एक बाद एक पहले और एक बाद में खड़ी हुई, पहले देखी बाद में देखी, ऐसा नहीं है। श्रीकृष्ण के सामर्थ्य है, वे साक्षात परब्रह्म है, भगवान है, सर्वव्यापक, इसलिए प्रत्येक गोपी के सामने एक ही समय में प्रकट होना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, और इसीलिए श्री गोपियां एक साथ खड़ी हो गई, उनमें शक्ति आ गई। अबला अपि उत्थाने असमर्था अपि उतस्थ, यहां अबला का अर्थ है वे उठने में खड़ी होने में असमर्थ थी, फिर भी उठ गई, यह श्री कृष्ण के दर्शन का प्रभाव था। युगपद इति दर्शनस्य पौर्वा पर्या भावात् एकस्यैव प्रतीकम् पुरतो भासमानत्वात् एतेन पूर्वम् उपविष्टैव जगुरिति मन्तव्यम्। उपविष्टैव जगुरिति मन्तव्यम्। इसके द्वारा श्रील जी गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि जो पहले कहा गया कि जगु सब पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्णम तदागमन कांचिता, जो गोपियां गा रही थी तो इसमें से ये जो गा रही थी तो उस समय भी ये जो अबला शब्द है बता रहा था कि गोपियों ने जो गीत गाया है वो खड़ा होकर के नहीं गाई है, उनमें चलने की और खड़ा होने की शक्ति नहीं थी, बैठ करके ही रो रही थी और गा रही थी। इतेना पूर्वम उपविष्टा एवं जगु इति मंतव्यम। अत्र दृष्टांत तन्व प्राणम इव आगतम प्राणयति इति प्राण आत्मानम। आत्मा जब शरीर में आ जाता है प्राप्य तन्व शरीराणि इव आत्मनः एकत्वात् एकवचनम् तनूनां बहुत्वेन तथा। श्रीकृष्ण एक हैं और गोपियां अनेक हैं, एक को देख करके सब उज्जीवित हो गई, बैठ गई, खड़ाई खड़ी हो गई। तो जैसे आत्मा श्रीकृष्ण स्वामी जी वर्त करते, आत्मा एक होता है लेकिन वो अनेक शरीरों को ग्रहण करके उनको जीवित करता है। ऐसे एक समय में कई शरीर जीवित नहीं करता है, लेकिन शरीर के भीतर इंद्रियां हैं तो इंद्रियों के लिए भी तनो शब्द का प्रयोग किया गया। अथवा एक आत्मा अनेक शरीर को जागृत करता है, लेकर के चलता है। शरीरम जद अवाप्नोति जच्चा चापित क्रामति स्वर। एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि विमुद्धा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीरम जद अवाप्नोति जच्च अपि उत्क्रामति। उसके बाद क्या है? अच्छा हाँ, उत्क्रामंतम स्थितम वापि, मेरा तात्पर्य जिससे था उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वित विमुढ़ा नानुपसंति पसंति ज्ञान चक्षुषम। इस शरीर के भीतर आत्मा रह करके किस तरह से शरीर को छोड़ता है या ग्रहण करता है और शरीर में रह करके विषयों को भोगता है, इस बात को विमुढ़ा नानुपसंति, जो मूर्ख है वे नहीं जान पाते, आत्मा को नहीं जानते। पसंति ज्ञान चक्षुषम, तो वास्तव में आत्मा अनेक शरीर ग्रहण करता है, पर परमात्मा तो ये कहीं समय में अनंत शरीर ग्रहण कर लेता है, ग्रहण नहीं करता है। वास्तव में परमात्मा का दूसरा हिसाब है, पर इस बात पर चिरंजीव गोस्वामी पाद जी विचार कर रहे हैं कि गोपियां एक साथ ही खड़ी हो गई, असमर्थ थी खड़ी होने में, वो बैठ करके रो रही थी और बाद में तो छटपटा करके गिरने लगी थी, मूर्छ अब मरण की दशा, अंत्य दशा, दसवीं दशा हो रही थी। पर श्रीकृष्ण को देख करके इतना उत्साह हुआ, इतना सुख मिला कि तुरंत खड़ी हो गई। वैसे इसमें लीला माधुर्य है, गोपियों का खड़े हो जाना, श्याम सुंदर का इस प्रकार से रूप प्रकाशन, लेकिन फिर भी सिद्धांत, सिद्धांत मतलब है आत्मा और देह का सिद्धांत भी यहां विचारणीय है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एक आत्मा अनेकों शरीर को धारण करता है, उनमें चेतना पैदा करता है, उनके द्वारा काम करता है, करता है, करता है। और शरीर तो ऐसे जड़ है, शरीर कभी भी चेतन नहीं हो, तो आत्मा की चेतना इसमें आती है तो यह चेतनीभूत हो जाता है। तो श्री कृष्ण आत्मा के भी आत्मा हैं, परम प्रेष्ठ हैं, परम प्रिय हैं, तो उनके आने से कमजोर शरीर में भी इतनी स्फूर्ति हो जाना यह बिल्कुल स्वाभाविक है। तो शिलाजी गोस्वामी ये अर्थ करते हैं, तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फुल्ल दृशो बला। श्रीकृष्ण को देख करके प्रसन्नता से, प्रीति से उत्फुल्ल दृशा, दृशो उत्फुल्ल, उत का अर्थ उच्च, फुल्ल का अर्थ है विकसित, इसलिए हिंदी में फूल कहते हैं, फ्लावर को फूल कहते हैं। फूल का मतलब होता है खिला हुआ, तो अंग्रेजी में फूल माने पूरा पूरा है, तो वो भी फूल है। और तो एलएल है ना, एफ यू एल एल, फूल उच्चारण तो वास्तव में वही होगा, फूल फूल, तो फूल का अर्थ विकसित पुष्प है, फूल का अर्थ कोई चीज प्रफुल्लित है, खिला हुआ है। गोपियों का नेत्र, गोपियों के नेत्र आंसू से आविल थे, दिग्ध थे, लेकिन फिर भी कृष्ण को देखते ही उनकी आंखें खिल गई आनंद से और तुरंत उठकर खड़ी हो गई। और इसके बाद गोपियों के अलग अलग व्यवहार के द्वारा उनके भाव का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करेंगे, आगे वे कर रहे हैं। पहले तो समवेत उनकी चेष्टाओं का वर्णन किए, उनके विलाप आदि का, और अब भिन्न भिन्न भाव के अनुसार अलग अलग आठ सखियों के भाव का वर्णन करेंगे। लीला वर्णन द्वारा उनके भाव का वर्णन किया जाएगा। भाव अमूर्त है लेकिन लीला मूर्त है। जैसे किसी गोपी ने श्याम सुंदर का करम्बुज पकड़ा तो यह लीला उसने पकड़ा, लेकिन इसके द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी उसके भाव का दिग्दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रति उसका भाव विशेष है, कुछ अलग तरह का भाव है। कोई भाव में देखिए, पहला तो विचार ये किया जाता है, श्रील रूप गोस्वामी पाद ने किया है, कोई कोई भगवान की सखियां, भगवान की प्रेसियां पराधीन नायिका है। पराधीन का अर्थ होता है वो श्री कृष्ण के अधीन अपने को मानती है, और उनका जो कृष्ण के प्रति भाव है वो रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं तद्दीयता का भाव है, तद्दीयता भाव, मधु स्नेह। तो इसमें वो ये लिखते हैं कि जिस प्रेसी का, श्री गोपी का ये भाव है कि मैं श्री कृष्ण की हूं, बहुत गाढ़ ममता है, विश्वास है मैं श्री कृष्ण की हूं, तो यह भाव बहुत प्रदीप्त है, तो इसको तदीयता का भाव कहते हैं। मैं उनकी हूं, मैं उनकी हूं, इसको दक्षिण नायिका कहते हैं। यह नायिका मान नहीं किया करती है प्रायः, और प्रियतम श्याम सुंदर की इच्छा के अनुसार रहती है, अधीन रहती है। लेकिन एक भाव है मदीयता का भाव, मदीय, तदीय का अर्थ है कि मैं उसकी हूं, कृष्ण की हूं, और मदीय का अर्थ है कि कृष्ण मेरे हैं। ये राधा रानी का भाव है मदीयता में। तो इनमें वाम वाम में वाम भाव है, मतलब ये मान करती रहती है, और ये स्वाधीन भर्तृका, इनके प्रिय ही इनके अधीन है, ये उनके अधीन तो है ही वैसे स्वरूप से, लेकिन लीला में प्राय श्रीकृष्ण इनके अधीन रहते हैं। तो राधा रानी के भाव है कि कृष्ण मेरे हैं और किसी के नहीं, और चंद्रावली जी का भाव है कि मैं कृष्ण की हूं, मैं प्रिय की हूं। यद्यपि दोनों में दोनों भाव भी छिपा हुआ है, परंतु मदीयता का जो भाव है यह बहुत श्रेष्ठ है। तो यहां पर आठ सखियों के भिन्न भिन्न व्यवहार की बात श्रील सुखदेव गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं। आठ सखियों के नाम इस प्रकार से हैं, क्रम से इसमें जो दिया गया है श्रीलजीव गोस्वामी का अनेक ग्रंथों से उद्धृत करके और नाम बताए, चंद्रावली, श्यामला, सैब्या, पद्मा, राधा, ललिता, विशाखा और भद्रा, ये आठ हैं। आठों में से सात के व्यवहार का यहां वर्णन किया गया है, और आठवीं जो भद्रा है उसका वर्णन विष्णु पुराण में है, वहां से उद्धृत कर रहे हैं। भद्रा श्री कृष्ण को आती हुई देख करके और हर्ष से विह्वल होकर के कृष्ण 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 के अलावा उसके मुख से कुछ नहीं निकला, इतना विह्वल थी, केवल नाम आया कृष्ण कृष्ण, और बोली स्तंभित हो गई, और इसके बाद जाकर के उनके गले से लिपट गई श्याम सुंदर को। उसका वर्णन यहां पर स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन सर्वस्ताह केशवालोका परमोत्सव निर्वृता, इस वाक्य के द्वारा मानो सुखदेव गोस्वामी सबके मिलन का वर्णन कर दे। सर्वस्ताह केशवालोक परम उत्सव निर्वृता निर्वृता जहुर विरह जम तापम तदंगो पसिताशिष, तदंग उपचित आशीष, श्री कृष्ण के अंगों के स्पर्श से, दर्शन से, उनके मुस्कान आदि से उनको आशीष उपचिता, वो प्राप्त आशीष हो गई, उनके सारे मनोरथ पूरे हो गए श्री कृष्ण के श्री अंगों द्वारा। तो इसमें भद्रा का वर्णन है। तो सबसे पहले दक्षिण नायिका जो तदीयतामय भाव में सर्वश्रेष्ठ हैं, श्री चंद्रावली जी का वर्णन कर रहे हैं। काचित कराम्बुजम सौरेर जगृहे जगृहेऽञ्जलिनामुदा काचित दधार तद्बाहू मांसे चंदन रोषितम। सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि परम वैष्णव आचार्य, परम विरक्त मुनियों की सभा में श्री गोपीजनों के इस महान महाभाव का वर्णन कर रहे हैं। बहुत उत्कृष्ट प्रसंग है, बहुत दिव्य है। तो आधे आधे श्लोक में चार गोपियों के भाव का वर्णन किए हैं, आधे आधे श्लोक, दो श्लोक में, अर्ध श्लोक में। तो श्री चंद्रावली और श्यामला, शैब्या और पद्मा, चार के भाव का वर्णन आधे आधे श्लोक में किए, और तीन का वर्णन राधा, ललिता और विशाखा, इनका वर्णन एक एक श्लोक में किए हैं पूरा पूरा, तीन श्लोक बाद में, और भद्रा के भाव को गुप्त रूप से रखे हैं, सर्वाष्टाकेशवा लोक में शामिल कर दिए हैं। तो काचित कराम्बुजम सौरे जगृहे अंजलि नामुदा, किसी गोपी ने मुदा परम आनंद से, परम सुख से अपने प्रियतम श्याम सुंदर के कराम्बुज को पकड़ा अपने दोनों हाथों से। स्वाभाविक ही श्री कृष्ण को छूने की, आलिंगन करने की, उनसे बात करने की, उनके साथ चलने की इच्छा होगी। तो कराम्बुजम, श्री कृष्ण का कराम्बुज पकड़ा, जगृहे, जगृहे का अर्थ है गृहीतवती, काचित गोपी, इसे हम उपक्रम पढ़ रहे हैं। पूर्वम विरह दैनेन तुल्य वचन ही सर्वासामेव तुल्यता प्राप्ति दर्शिता। पहले श्री कृष्ण के विरह के कारण समस्त गोपियों के तुल्य वचन निकल रहे थे, एक समान वचन, और इसके द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी सर्वासामेव तुल्यता प्राप्ति दर्शिता। श्री सुखदेव गोस्वामी ये दिखाया कि सभी एक भाव में हो गए थे, दैन्य था, केवल रोदन था, दैन्य था। अधुना पर इस समय प्राप्त निजालंबनत्वेन, पर इस समय जब श्रीकृष्ण का दर्शन हुआ, श्रीकृष्ण आलंबन के रूप में प्राप्त हुए साक्षात, तो स्वस्व भावम अनुस्मरंती नाम मुख्या नाम चेष्टित भेद ही भाव भेदाना काशीदिति पंच भी। तो कुछ मुख्य गोपियों के अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनके भाव भेद का वर्णन कर रहे हैं। स्वस्व भावम अनुस्मरंती, उन्हें अपना अपना भाव स्मरण आ गया। विरह में तो सब एक भाव की थी, रो रही थी, लेकिन जब संयोग हुआ तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार हो गए। एक बार एक महात्मा कथा कह रहे थे वृंदावन में, बंगाल के महात्मा थे, तो उन्होंने इस श्लोक का इसी तरह के भाव का वर्णन किया कि जैसे गर्मी का दिन हो तो जमीन के भीतर कई प्रकार के धान्य बीज पड़े रहते हैं, कोई अंकुरित नहीं रहता है, पुष्प के रूप में या पेड़ के रूप में नहीं, सब दबे रहते, लेकिन जब बरसात होती है, बरसात होती है तो जमीन को भेद करके बहुत से जीव उत्पन्न होते हैं, तो वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार प्रकट होते हैं। कोई बहुत लंबा होता है, कोई छोटा होता है, लेकिन अब बरसात होने पर सब उगते हैं अपने अपने अनुसार, और उसके पहले सब दबे रहते हैं, एक दशा में सुप्त रहते हैं। तो ये तो कोई बहुत प्रकृष्ट या स्पिरिचुअल उदाहरण नहीं है, लेकिन कृष्ण के विरह में गोपियां रो रही थी, बिलख रही थी, बार बार दुखी थी, तो उन सबका भाव एक जैसा हो गया था, तुल्यता प्राप्ति हो गई थी एक समान। और इसी कारण से विरुद्ध पक्ष में भी विरोध नहीं रह गया था, सपत्नी भाव नहीं रह गया था, यहां तक कि श्री चंद्रावली और श्री राधा एक साथ कृष्ण को खोज रही थी, कोई भेदभाव नहीं, कोई स्पर्धा नहीं, कुछ नहीं। नहीं तो चंद्रावली का और श्री राधा रानी का ग्रुप ऐसा है कि वैसा तो संसार में झगड़ा नहीं चलेगा जितना बाप रे बाप। और जब कोई सखी सफल हो जाती है राधा रानी के ग्रुप का, राधा रानी को के साथ श्री कृष्ण को मिला देती है, तो वह जीवन की सबसे बड़ी सफलता समझती है और उस दल में हाहाकार मच जाता। लेकिन किसी दिन अगर चंद्रावली के ग्रुप की कोई सखी अपने चातुर्य से श्याम सुंदर को ले जाती है चंद्रावली के पास, तो उधर आनंद छाता है और राधा रानी के शोक का कहर गिर जाता है। यद्यपि यह शोक या सौतिया डा या कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल यह आनंद की लीला है। स्वयं राधा रानी की ही छाया है चंद्रावली, लेकिन ये लीला रस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए श्याम सुंदर की यह सब योग शक्ति का चमत्कार है, योग माया का चमत्कार है, इस रस का वे आस्वादन करते हैं। लेकिन प्रकट रूप में इतना चलता है, ऐसे देखने में लगेगा कि बाप बाप कितनी घृणा है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो अपने को प्रिया जी के जूथ का मानते हैं, तो उनके बारे में कथा है कि वे दोना में छाछ पीते थे, एक दोना, छोटा सा दोना एक वृक्ष में लगता था, दोना जैसा पत्ता ही लगता था, तो उसी को लाया जाता था और उसमें वे छाछ पीते थे। किसी दिन उनको पता लगा कि यह सखी गांव का दोना है और वह सखी चंद्रावली के ग्रुप की है, तो उन्होंने वो दोना लेना स्वीकार नहीं किया, इसमें नहीं पिएगा। वे अंजलि में छाछ पी लेते थे। कई भक्तों ने कहा कि नहीं दोना में पीजिए, कुछ अंजलि से ज्यादा अंटता था उसमें, लेकिन ज्यादा अंटे चाहे कुछ भी हो, चंद्रावली के जूथ की सखी के गांव का है तो उसके गांव का पानी नहीं पीऊंगा, दोना की बात तो दूर। यह बाह्य दृष्टि से विचार करने पर लगता है रे बाप रे इतना द्वेष भरा हुआ है। तो वह द्वेष कृष्ण के विरह में एकदम शांत हो गया, सब में तुल्यता पैदा कर दिया था। अब जब ही प्रकट हुए तब अपने अपने स्वभाव के अनुसार श्री कृष्ण के प्रति जो व्यवहार हो रहा है और सखियों के प्रति नहीं, श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है जिसका वो प्रकट हुआ है। तो उस समय बताया गया है कि राधा रानी अपने दांतों से अपने होठों को दबा करके और निर्निमेष भाव से श्री कृष्ण के मुख पर देख रही है, क्रोध में देख रही है। कभी कभी तो वो देखती नहीं है, मान करते हैं, लेकिन उस समय क्रोध में देख रही है और मुख से निकल रहा है कपटी। उस दशा में भी उनका वाम भाव शांत नहीं हो रहा है, जो कि विरह में बिल्कुल समाप्त हो चुका था। मैं दासी हूं, हम पर कृपा कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, रो रही थी साथ में, सब एक समान, लेकिन सामने आते ही उनका अपना स्वभाव प्रकट हो गया। केवल कितौ धूर्त कपटी यही निकल रहा था। तो सबसे पहले चंद्रावली जी के भाव का वर्णन करते हैं। काचित कराम बुजम सौरेर जगृह अंजलि दामोदर। काचित गोपी मुदा हर्षेण अंजलिना सौरेह श्रीकृष्णस्य करांबुजम दक्षिण कर पद्मम जगृह। यहां करांबुजम का तात्पर्य है दाहिना हाथ, श्रीकृष्ण के दक्षिण कर पंकज को मुदा जगृह। यह मुदा सब जगह लगेगा, कहीं कहीं सुप्त है लेकिन सब जगह लगाना चाहिए मुदा, परम आनंद के साथ किसी भी गोपी के साथ मुदा। मूत म हर्षकार हर्ष उकार और त आधा त, इसका अर्थ होता है आनंद सुख। और मुदा तृतीय एक वचन में है, मतलब आनंद के साथ मुदा, आनंद से हर्ष से अपने अंजलि में सौरी के श्री कृष्ण के करांबुज को जगृह पकड़ लिया। इयं मृदु सख्य प्राय दास्या। यह सखी मृदु है, बहुत कोमल स्वभाव की है, श्री कृष्ण को कभी गाली नहीं देती है, कभी कठोर वचन नहीं बोलती है, मृदु है, बिल्कुल अनुकूल नायिका। सख्य प्राय दास्या, ये अपने को दासी मानती है परंतु श्री कृष्ण के प्रति सख्य भाव है, सख्य का अर्थ बराबरी का भाव है, और अपने को दासी मानती है। कांत पराधीन, ये सदा प्रियतम श्याम सुंदर के अधीन रहती है, और दक्षिणा अनुकूल रहती है, कभी प्रतिकूल नहीं। नामना चंद्रावली, इसका नाम है चंद्रावली। श्री राधा रानी को सबसे ज्यादा द्वेष चंद्रावली से ही है। एक बार की लीला है, एक श्लोक में लिखी गई है लीला, कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ वृंदावन विहार कर रहे थे, तो चंद्रमा की किरणों को फैला हुआ देख करके और चंद्रमा की शोभा देख करके श्रीकृष्ण श्रीमती राधा रानी के श्रीअंगों का वर्णन करने लगे, और वर्णन करते करते कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारा मुखमंडल एक पूर्ण चंद्रमा जैसा है, यह चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। तो तुम्हारा मुख चंद्र है, और इस पर जो तुम सौभाग्य का तिलक धारण की हो वो भी एक चंद्रमा है गोला। मुख चंद्र है तो चंद्रमा में एक दूसरा चंद्रमा है, और वर्णन करते करते तो वो कहे तुम्हारे नख में 10 चंद्रमा है, अंगुली में ये भी चंद्रमा है, ये भी चंद्रमा है, पैर में 10 चंद्रमा है, तो 20 चंद्रमा है पैर में और हाथ में चंद्रमा, मुख चंद्र है, ललाट चंद्र है, ये है वो है। तो राधा रानी तुरंत मान कर गई, सुनते हैं चंद्र अवली, अवली मतलब श्रेणी समूह, तुम्हारे शरीर में चंद्र समूह है, सब जगह चंद्र है चंद्र है। तो राधा रानी मान कर गई, भगवान तो पहले समझे नहीं कि ये क्यों मान कर गई। तो राधा रानी कहती हैं कि तुम मेरे साथ विहार कर रहे हो और चंद्रावली की याद कर रहे हो। अब इतने से रूठ गए, चंद्रावली चंद्र श्रेणी की याद आ रही है, इनके अंगों का श्री अंगों का वर्णन कर रहे हैं, आनंद से दर्शन कर रहे हैं भगवान, लेकिन चंद्र शब्द बार बार आ जाने से उन्होंने स्वयं ही चंद्रावली सोच लिया और मान कर गए। तो यह दक्षिण नायिका है और श्री कृष्ण के बिल्कुल अनुकूल रहती है। अधुना तद आगमनात् सर्वासम एव विरह तापापगमम परमोत्सवादिकम च षड्भिर् वदन आदौ पृथक्त्वेन तासु मुख्यानाम प्रसिद्धानाम अष्टानाम प्रेम चेष्टितानि आह काचिदिति पंचभिः। इस प्रकार सबके विरह ताप का उपशम हो गया है, परम उत्सव छा गया है, तो उनके परमोत्सव को और उनकी प्रेम चेष्टाओं को, प्रेम चेष्टितानि को षड्भिर् वदन 6 श्लोकों में कहते हुए सबसे पहले पृथक्त्वेन तासु मुख्यानाम प्रसिद्धानाम अष्टानाम प्रेम चेष्टितानि आह। तो ये 5 श्लोकों में ही हुआ है, लेकिन 6 श्लोक और सर्वस्ता केशवालोक का परमोत्सव निर्वृत्ता वहां से जोड़ लिया है। करांबुजम एकम, एक करकमल को धारण किया, क्योंकि दूसरा जो हाथ था वो अंबर धारणा, उससे वे पीताम्बर पकड़े थे, एक हाथ खाली था। तो श्री चंद्रावली जी ने भगवान के परम सुंदर स्निग्ध और समस्त तापहारी हस्त कमल को पकड़ लिया शीतल करने के लिए अपने को, अथवा तुरंत ही प्रियतम को सहारा देना चाहा कि वन भ्रमण करके आए हैं, थके होंगे, चलेंगे, तो इनका हाथ पकड़ करके चलूंगी। और भी भाव है इसका, मैं आगे पढ़ रहा हूं। कि फिर कहीं दूर न निकल जाए, चले जाए, इसके लिए कस करके बाह पकड़ लिया चंद्रावली ने। इसमें कुछ भाव लिखे हैं। तो गोपी चंद्रावली भगवान के हस्त कमल को पकड़ करके मानो कहती है, जस्तुम दीन जनान पालन विधौ नित्यो लसत कंकड़स तस्यास्मिन तव हस्त मादृशी जने कस्माद उपेक्षा जने। हे श्री हस्त कमल, वो सखी कहती है भगवान के हाथ से, हे श्री हस्त कमल, हमारे प्रियतम का हाथ, आज तक हम दीनों को तुम ही पाल रहे थे, तुम ही गोवर्धन उठाए थे ना, तो उस समय इतने दयालु थे और इस समय इतना कठोर हो गए। मानो भगवान के हस्त कमल से प्रश्न कर रही, सदा तुम ही दीनों का पालन किए हो, दुखियों का पालन किए हो, इस ब्रज में हम सब का, हमारे मुख का पसीना पोछे हो, हमें व्यजन किए हो सबका, तो तुम में नित्य कंकड़ सुशोभित रहता है, तो हमारे जैसी दीनहीन स्त्री के प्रति तुम्हारे हृदय में उपेक्षा कैसे उत्पन्न हो गई। पहले तो तुमने पालन किया है। इत्थम प्रष्ट मनः शशांक वदना, इस प्रकार पूछने के लिए वह चंद्र वदना गोपांगना पूर्ण दयावान भगवान के हस्तांबुज को पकड़ा है बल प्रश्न करने के लिए। और यह वास्तविकता है कि श्री भगवान किसी का भी पालन करते हैं तो हाथ से ही करते हैं, हस्तावलंबन करते हैं, हाथ से रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। तो हाथ से प्रश्न करने के लिए अगर पकड़ी तो बिल्कुल स्वाभाविक। अकुतो भयोपि भगवान यह कस्मा दर्भाग भूत विचिंतन लोला नहीं तादृश स खलु किंत्वमेव अविलंबम अस्य करम आजगृहे अन्य। दर का अर्थ होता है जंगल और दर का अर्थ डर भी होता है संस्कृत में। दर को ही हिंदी में डर कहते हैं, जैसे आदर, जो आदर के साथ उनको बुलाओ, तो आदर, दर का एक अर्थ होता है संकोच, तो उसको डर कहते हैं। डर के साथ, डर का मतलब थोड़ा डरना चाहिए और थोड़ा संभ्रम रहना चाहिए, आदर का भाव ऐसे। तो डर और डर में कोई अंतर नहीं है। तो डर शब्द लेकर के हरीश्वरी जी कहते हैं कि हे भगवान, श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं गोपी, आप तो अकुतो भय हैं, आपको कोई भय नहीं है कहीं से किसी से भी, तो आप क्यों डर भाग हुए? डर भाग मतलब आप क्यों जंगल में चले गए, डर में क्यों चले गए? डर का अर्थ है वन और डर का अर्थ है डर। जब आप अकुतो भय है, आपको कहीं किसी से कोई भय नहीं है, तो आप फिर भय को क्यों ग्रहण किए, क्यों डर गए, क्या डर हो गया? डर भाग हुए, डर भाग हुए, डर हो गया आपको। तो इति विचिंतन लोला, इस प्रकार से सोच करके वह चंचला गोपी, नहीं तादृश स खलु किम तू अयम एव अविलंबम अस करम आज गृह। ये सोच करके भगवान के हाथ को पकड़ी, ये सोचे कि इनके हाथ का अवलंबन लेने से हमें कहीं डर नहीं रहेगा, या पूछने के लिए भी। अजात शत्रु श्री नाथ कस्मा दसमा सुबह रथी, और भगवान श्री कृष्ण से मानो प्रश्न करती है कि हे श्रीनाथ, आप तो अजात शत्रु हैं, आपका शत्रु कोई नहीं है, तो हमसे बैर क्यों चालू किए? आपके दृष्टि में तो कोई शत्रु नहीं है। हेतुर्वा अस्ति अरिभाग संग इत्यस्या अरिकरम दधम। तो श्रीकृष्ण के हाथ में चक्र का चिन्ह है, इस चक्र को अरि कहते हैं। अरि का अर्थ ही है चक्र। मानो गोपी हाथ को पकड़ करके कहती है कि आप तो अजात शत्रु हैं, फिर भी आप हम लोगों से बैर किए, हमें रुलाए। हम समझते हैं ये कारण क्या है कि आपके हाथ में अरि है, आपके हाथ में शत्रु है, इसलिए शत्रु भाव हमारे प्रति उत्पन्न हो गया। आपका अरि है अरि भाग, इसके संग से आप में निर्दयता आ गई और हमारे प्रति वैर भाव करने लगे, अन्यथा आप तो अजात शत्रु हैं। और फिर उस गोपी ने सोचा कि अति प्रियतमा त्वस्य रमा एव अति प्रियतमा त्वस्य रमा एव इति अपराजवात कर्तुम तत्तुल्यमात्मानं तत्कराब्ज करा भवति। उस गोपी ने चंद्रावली में सोचा कि श्याम सुंदर की सबसे प्रियतमा है रमा। यहां रमा शब्द से राधा रानी भी तात्पर्य है और लक्ष्मी जी। तो वो गोपी सोचे कि इनकी अति प्रियतमा है रमा, और रमा अपने हस्त में हमेशा कमल लिए रहती है, तो मैं भी कमल लेना चाहती हूं। तो तत्कराब्ज करा अभवत, श्रीकृष्ण के कराब्ज को अपने हाथ में पकड़ा। तो श्रीकृष्ण का हाथ भी एक कमल है, तो जैसे लक्ष्मी जी कमल लिए रहते हैं, तो यह भी कमल ले ली, श्रीकृष्ण का कर कमल धारण किया। प्रसादा अभयोर दक्षा सर्वेशु अपेशु ये वचत तदन्य साधने नालम इति तत्कर्म आदरम। प्रसाद और अभय देने में सबसे बढ़ करके भगवान का हस्त कमल है, इसीलिए अन्य साधनों से हमको क्या तात्पर्य, अन्य साधनों का तिरस्कार करके उस गोपी ने श्रीकृष्ण कर कमल का ही सहारा लिया। यही प्रसाद और अभय देता है, तो अन्य साधन से क्या मतलब? अथवा वो श्रीकृष्ण का बांह पकड़ करके मानो शपथ कराना चाहती है, न तुम कुरु पुनः प्रागवन ना हम कुर्जा मितः प्रभो तत्कर्म स्व करे निधत इति सच्छपथाय किम। मानव चंद्रावली हाथ पकड़ करके ये कहती हैं कि आप अब ऐसा कभी मत कीजिएगा, आप शपथ लीजिए। और मैं भी शपथ ले रही हूं कि पहले जैसी अब मान गर्व नहीं करूंगी, आप भी ऐसे कभी मत छोड़कर जाइएगा, और मैं भी शपथ लेती हूं कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, गर्व नहीं करूंगी। तो दोनों हाथ मिला करके प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मानो वो शपथ खिलाने के लिए हाथ पकड़िएगा, आप भी शपथ खाइए, मैं भी शपथ खाती हूं, मैं रूठूंगी नहीं, गर्व नहीं करूंगी, और आप हमको छोड़कर कभी मत जाइएगा। ये हाथ पकड़ करके शपथ, दो आदमी को शपथ खाना होता है, दोनों हाथ मिला, हाथ मिलाकर शपथ खाते। बिना पानी ग्रहण न स्याम अहम अस्य कुटुम्बिनी, बिना पानी ग्रहण के मैं इसकी कुटुम्बिनी नहीं बन पाऊंगी। उन्होंने सोचा, बिना पानी ग्रहण न स्याम अहम अस्य कुटुम्बिनी इति किम तरसा शीघ्रम जगृहे पानी न करम। उस गोपी ने सोचा कि बिना पानी ग्रहण के अर्थात बिना विवाह के मैं इनकी पत्नी नहीं बन पाऊंगी, कुटुम्बिनी नहीं बन पाऊंगी, क्या इसी से उसने शीघ्र ही भेंट होते ही श्री कृष्ण के साथ पानी ग्रहण कर लिया, हो सकता है यही विचार आया हो। तो किसी भी तरह से भाव तो यह है कि श्री कृष्ण का करांबुज इतना शीतल है कि वह विरह ताप से जलती हुई गोपी उसके स्पर्श से अपने को शीतल करने के लिए तुरंत पकड़ ली बांह को। फिर गोपी ने सोचा कि अति निर्दय मनुष्यों की जन्मभूमि है यह भगवान की भुजा, वो दूसरे आधे श्लोक के लिए काचित धार तद बाहू अंशे चंदन रूषित हूं, उसके लिए कह रहे हैं। दूसरी गोपी ने श्री कृष्ण के बाहों को अपने स्कंध पर पकड़कर धारण कर लिया। हरिश्वर जी कहते हैं कि उस गोपी ने मानो कहा, इस संसार में जो अति निर्दय लोग हैं क्षत्रिय, वो यहीं से जन्म लेते हैं, भगवान की भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ है। तो इस क्षत्रिय को जन्म देने वाली भुजा को अपने भुजा से जरा मिला करके देखूं, इसके बाल को अगर इनकी भुजा निर्दय क्षत्रियों को जन्म देने वाली है तो हमारी भी भुजा क्षत्रिय है, तो शायद भगवान की भुजाओं को शिक्षा देने के लिए कि इस तरह की गलती मत करो, तुम हमेशा मेरे कंधे पर रहो। निर्दय लोगों की जन्मभूमि है भगवान की बाह। भगवान की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, और क्षत्रियों के द्वारा ही शासन होना चाहिए वास्तव में, तो ऐसे कोमल नेताओं के द्वारा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। भगवान ने कुछ सोच करके अलग अलग लोगों को जन्म दिया है। अर्जुन को भगवान बार बार कहते हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, और बहुत सुकृति क्षत्रिय इस प्रकार का युद्ध प्राप्त करते हैं, तुम लड़ो, तुम्हारा ये स्वधर्म है। खैर यहां पर तो हम लोगों का ये विषय नहीं है, ये केवल भाव है, उद्भावना है, भगवान की भुजाओं का स्मरण हो रहा है, यही परम लाभ है। तो कोई गोपी श्री कृष्ण के करांबुज को पकड़ी, और कोई उनके बाहों को अपने स्कंध पर ले ली। तो दाहिने हस्त कमल को श्री चंद्रावली जी ने पकड़ा अंजलि से, और बाएं बाह को जो बिल्कुल सामने ही सीधा खड़ा हुई साथ में श्री श्याम सुंदर, इतनी आत्मीयता है प्रियतम श्याम सुंदर के साथ कि उनके साथ खड़ा होना, उनसे लिपट जाना, यह स्वाभाविक है गोपियों के लिए। तो श्यामला नाम की सखी जो श्री राधा रानी के जुथ का है, वह भगवान श्याम सुंदर के पास बिल्कुल खड़ी होकर के एकदम साथ में और उनके बाहों को लेकर के रख, शायद उसने देखा। अब देखिए इसके भाव का उद्गम, जब उसने देखा कि चंद्रावली कृष्ण के हाथ पर पकड़ी है, तब उस सखी ने सोचा कि यह श्री कृष्ण के एक हस्त कमल को धारण की है, तो मैं तो श्री राधा रानी की दासी हूं, मैं दासी होकर के भी श्री कृष्ण के भुजा को धारण कर रही हूं, तो चंद्रावली के बराबर तो मैं ही हूं, तो राधा रानी तो दूर की बात है। उस श्यामला ने सोचा, सिमन में बात है, लेकिन इस विरह के बाद तत्काल में इस प्रकार का भाव का उद्गम असंभव सा दिखता है। अपना भाव उदित हुआ, वह भी अपने परम सौभाग्य को मानकर भगवान के चंदन लिप्त भुजा को अपने कंधे पर धारण किया। तो बाहों के सुगंध से आकृष्ट होकर के और बाहों की सुंदरता शीतलता से आकृष्ट होकर के विरह ताप से खिन्न गोपी भगवान की भुजाओं को लेकर के अपने स्कंध पर धारण किया। अर्थात उसका भाव था कि मैं इनकी प्रिया हूं, ये मेरे हैं। अथवा श्यामला और भद्रा ये दो ऐसी सखी हैं, इनके बारे में सुलजीव गोसाईंपाद जी कहते हैं कि ये तटस्था हैं दोनों, ये किसी दल में नहीं है, स्वतंत्र उम्मीदवार ये दोनों स्वतंत्र हैं। भगवान के साथ तो अनेक प्रकार के गोपियों का संबंध है, कोई आधारित नहीं है कि उसके माध्यम से हो ये हो, तो उनका धाम है ब्रज और वहां वे स्वतंत्र विहार कर रहे हैं। तो श्यामला स्वतंत्र है और वह प्रीतम से संबंध रखती है श्याम सुंदर से, और भद्रा भी, और दो दो जो हैं तो दो चंद्रावली के ग्रुप का है और दो श्री राधा रानी के ग्रुप का है। मैं यहां ग्रुप शब्द कह रहा हूं, जूत शब्द कह रहा हूं, इसका बिल्कुल लौकिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। तो ललिता विशाखा ये श्री राधा रानी की सखियां हैं और सैब्या और पद्मा ये चंद्रावली जी की सखियां हैं, जी को संगपा जी वर्णन करते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण की आठ मुख्य सखियां हैं। ऐसे उनकी आठ मुख्य सखियों का वर्णन जो अन्य जगह मिलता है वो राधा रानी के जूथ में जो और सखियां हैं उनके लिए वर्णन आता है। राधा रानी को छोड़ करके उनके अनुकूल चलने वाली उनकी अपनी प्राण सखी वो आठ हैं, अष्ट सखी। और इस तरह से चंद्रावली की भी अष्ट सखियां हैं प्रधान, ऐसे तो बहुत बहुत है। और इस संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में भजन करने वाले भक्तों के लिए इस प्रकार से सखी वर्ग में किसी तरफ हो करके, विशेष करके श्री प्रिया जी के तरफ हो करके, और श्री कृष्ण को और श्री राधा को मिलाना, बस यही सबसे बड़े भजन की ऊंचाई है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति यही है कि प्रिया जी को और श्याम सुंदर को मिलाना। मन में यही सोचते रहना, मानसी सेवा इसको कहते हैं, भगवान की सभी प्रकार की सेवाओं से बढ़ करके सेवा है। और उसके लिए जुक्ति चाहिए, जुक्ति निकुंज जुनो रतिकेलि सिद्ध्यै यायालिभिर् जुक्तिरपेक्षणीया तत्राति दाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दः। तो वर्तमान काल में कोई मान लीजिए इस पथ का उपासक है चाहे इससे पहले भी, तो गुरु इस प्रकार की जुक्तियों में बहुत दक्ष है, ये कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस गुरु अष्टक में। तत्राति दक्ष, तत्र तत्र का अर्थ है उन जुक्तियों में से ब्रज जुगल को राधा कृष्ण को मिलाने में बहुत दक्ष होता है, ऐसे गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। इसका अर्थ है कि गुरु निश्चित ही राधा कृष्ण के अंतरंग लीला में डूबा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, ये होता है निश्चित। ये वास्तव में गुरु वंदना क्या है, गुरु के लक्षणों को ही व्यक्त किया गया है। पहला लक्षण है कि वह भगवत लीलामृत की वर्षा द्वारा, भगवत कथा द्वारा त्रिताप से दग्ध जनता को सींचता है। गुरु बादल बन जाता है, संसार दावा नलली ढलोक त्राणा ये कारुण्य घना घनत्। संसार दावानल से दग्ध, लीढ़ का अर्थ होता है दग्ध, संसार के दुख से जो मर रहे हैं, जल रहे हैं, वे कैसे सुखी होंगे। तो जैसे दावानल में झुलसते हुए जीव या वृक्ष पशु आदि वर्षा की झड़ी होने पर वे ठीक होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं वृक्ष आदि, और दूसरे पशु आदि ताप से बच जाते हैं। तो इस प्रकार जब श्री कृष्ण की चर्चा होती है, संकीर्तन होता है, तो उस वर्षा से जीव सब शीतल हो जाते हैं। तो गुरु वर्षा करने के लिए बादल का रूप धारण करता है, कारुण्य घना घना, वो दया से बादल बन जाता है। जंगल में आग लगती है तो किसी भी उपाय से बुझेगी नहीं, जब बादल वर्षा करता है तब बुझती है। वास्तव में भगवत कथा की, भगवत चर्चा की वर्षा होनी चाहिए, और वर्षा एक घंटा हो, एक दिन हो, दो दिन हो, सात दिन हो, या महीना हो, सालों भर हो, जब वर्षा होगी तभी दवा नल जाएगा, तभी चिंता मनुष्य की जाएगी, नहीं तो जाने वाली नहीं। तो गुरु इस तरह से करुणा का बादल बनता है। और पुनः दूसरा लक्षण बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के पद्धति के अनुसार उनके मार्ग में जो कीर्तन करता है, महाप्रभुर कैसे हैं मगे कीर्तनन नृत्य गीत, कीर्तन नृत्य गीत, और इस वाद्य से, इस रस से, माद्यन मनसो रसेना, मन के रस से भीग जाता है, और उसका मन इतना तल्लीन, इतना आनंदित होता है कि उसके शरीर में रोमांच, कंप, अश्रु, गदगद वचन होता है। ऐसे गुरु के श्री चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। इसमें लक्षण बताया जा रहा है। तीसरा लक्षण है कि जो श्री विग्रह की आराधना में, श्रृंगार में, पूजा में, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, क्योंकि मंदिर की सफाई आदि में, मंदिर की सजावट में, फूल लगाने में, श्रृंगार करने में, पूजा करने में स्वयं लगा रहता है और शिष्यों को लगाता है श्री विग्रह की आराधना, ऐसे गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि, भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि, भक्तों को तो नियुक्त करता ही है श्री विग्रह की आराधना में, और स्वयं भी लगा रहता है, ऐसे गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। और इसके बाद लक्षण चक्रवर्ती पाजी बताते हैं कि जो चार प्रकार के भगवत प्रसाद को प्रस्तुत करके, तैयार करके, तैयार करवा करके, और वैष्णवों को खाते हुए देख करके तृप्त होता है, गुरु की यही तृप्ति है कि वैष्णव खूब खाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और भी चार प्रकार के पदार्थ, चार प्रकार, चार ही नहीं, एक एक में कई कई प्रकार होना है, एक एक में कई कई भेद होगा, जैसे लेह, चोष्य, खाद्य और पेय, ये चार प्रकार के पदार्थ। खाद्य का अर्थ है जिसको दांत से चबाया जाता है, जैसे रोटी, पुआ, भात, रसगुल्ला आदि। रसगुल्ला तो पेय में भी थोड़ा थोड़ा आ सकता है पेय का अर्थ है दूध दही और जूस कई प्रकार के, और लेह का अर्थ चाटने लायक, लेहन औले चटनी अनेक प्रकार की लेह चाट चाट करके खाने वाले, और चोस्य चूसने लायक पदार्थ जैसे आम आदि तो ये भक्तों का, वैष्णव गुरुओं का स्वभाव होता है। भक्त जब कीर्तन करके और इस तरह से थक जाते हैं तो उनको खिलाना कितना बड़ा पुण्य होगा, इसको कौन कह सकता है। और कीर्तन करते हैं या भक्तजन कथा सुनते हैं तो ये स्वभाव है गुरुजनों का कि वे प्रसाद पाने के लिए उत्साहित करते हैं, और प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, कराते हैं। और ऐसा ही नहीं कहते हैं बस केवल उपवास करो, गंगा जी में बैठ करके जप करो, और शाम हो तो एक टाइम थोड़ा सा कुछ खा लो। ऐसे ऐसे एक साधु हमको बता रहे थे कि महाराज मैं कई साल से गंगा जी में बैठ करके जप किया कि मेरा शरीर रोगी हो गया, खाता नहीं था, केवल गंगा जी का पानी पी पी करके और कुछ पाठ कर रहा था। तो ठीक है, लेकिन इस तरह सभी लोग गंगा में बैठ करके भैंस जैसा रहे, गंगा जी में एक बार शरीर भेंक करके निकल जाना चाहिए। ये अधम शरीर गंगा में रखने के लिए नहीं, देह भी नहीं मलना चाहिए, और फिर खेल कूद करना, स्पोर्टिंग करना, तैरना, ये सब गंगा जी में निषिद्ध है। इस महातीर्थ में ये सब नहीं करना चाहिए। शरीर को एक बार गंगा जी के जल से भें लिया, पोछना भी नहीं चाहिए सीधा चुना, ये नियम है। ये गंगा जी साधारण नदी नहीं है, ये भगवान का चरण धोन आ रहा है, तो उसमें तैरना, कुल्ला करना या किसी प्रकार से विहार करना ये ठीक नहीं। तो कोई इस भाव से करे कि तब गंगा जी का पानी दुर्लभ है, इसी में बैठ करके अब दिन भर कुछ पढ़ूंगा, अरे थोड़ा खा पी करके आनंद से नाचना गाना चाहिए ये जरूरी है। तो चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वादोन्न तृप्ता हरिभक्त संघान कृतैव तृप्तिम भजता सदैव। जब गुरु देखता है कि ये सारे हरिभक्त कृष्ण भक्त और प्रसाद खा करके तृप्त हैं, तो उनको तृप्त देख करके वो तृप्ति का भजन करता है, मतलब वो तृप्त हो जाता है। कृतैव तृप्तिम भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद। और इसके बाद बताते हैं कि श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रति क्षणास्वादन लोलुपस। जो श्री राधा माधव के रूप गुण लीला माधुर चरित आदि को प्रत्येक क्षण आस्वादन करता है, कभी बोलता है, कभी सुनता है, कभी मनन करता है, प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद, ऐसे गुरु के श्री चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। ये गुरु का लक्षण है, उसे श्री राधा और श्री श्याम सुंदर के लीलाओं के प्रति लोलुप होना ही चाहिए। और ये इसके बाद आया निकुंज जूनो रतिकेल सिद्धि याया लिभीर जुक्ति रपेक्षणीय तत्राति दाक्षद अति बल्लभ। श्री राधा और श्याम सुंदर को मिलाने में, उनकी सेवा करने में, विविध युक्तियों में गुरु अक्षर दक्ष है, और उस दक्ष के कारण वो श्रीकृष्ण का बहुत प्रिय है। अति वल्लभ से अति वल्लभ बहुत प्रिय व्यक्ति है, ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। और सातवां श्लोक बता रहा है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, ऐसा गुरु, इन सारे लक्षणों से युक्त जो गुरु है, ऐसे गुरु को सारे शास्त्र और सभी साधु संत कहते हैं कि साक्षात हरि है। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण जैसा उसका आदर करते हैं, सभी शास्त्र कहते हैं वो साक्षात हरि है, साक्षात भगवान है, और शास्त्र कहते हैं और शब्द भी साधुओं के द्वारा भी ऐसा ही माना जाता है, मतलब संत भी कहते हैं। किंतु प्रभोर या प्रियाय वतस्य, परंतु वास्तविकता क्या है कि वही साधु और वही शास्त्र फाइनली कहते हैं कि नहीं, वो तो हरि का प्रिय है, हरि नहीं है। देखिए, किसी भी वक्तव्य में एक पूर्व पक्ष होता है और उत्तर पक्ष होता है, तो कहीं भी उत्तर पक्ष सदा बलवान होता है। जैसे वेदों में पूर्व मीमांसा है कर्मकांड, और इसके बाद ज्ञानकांड, तो कर्मकांड से ज्ञानकांड सदा भारी है, सदा श्रेष्ठ, तो पूर्व पक्ष होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो पूर्व पक्ष में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र ही उक्त तथा भाव्यते एव सभ्य। सारे शास्त्रों के द्वारा ये कहा गया है कि गुरु साक्षात हरि है, और तथा सद्भी एवं भाव्यते, और संतों के द्वारा भी ऐसा ही कहा जाता है। तो शास्त्र और साधु सभी कहते हैं कि गुरु साक्षात हरि है, किंतु बट ये पूर्व पक्ष को काटा जा रहा है, जो पहले बात कही जा रही है उसको काटा जा रहा है। किंतु प्रभोर या प्रिय एवदस्त, किंतु किसका है? चक्रवर्ती पाद जी का है? नहीं, वही समस्त शास्त्र और सारे साधु और गुरु भी स्वयं, ये तीनों कहते हैं कि गुरु कृष्ण का प्रिय दास होता है, प्रिय एवदस्त, हरि नहीं होता, भगवान नहीं होता। इतना क्लियर वर्णन किया जा रहा है। तो कोई गुरु अगर अपने को मान ले कि यह मैं साक्षात हरि हूं, तो यह बहुत बड़ा भ्रम है। और शिष्य आदि भी अगर एक्सक्लूसिवली यही मान लें कि हमारा गुरु तो भगवान है, तो अज्ञान में फंसे हुए हैं, ये भ्रम है। तो साक्षात हरि है तब तो राधा माधव को हटा करके गुरु को ही बैठा देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते हैं आचार्य लोग? सोचने की बात है ना। किंतु शब्द जो लगाया जा रहा है वो चक्रवर्ती पाजी अपनी ओर से नहीं लगा रहे हैं, वो शास्त्रों के उपसंहार निर्णय और साधुओं के निर्णय को ही कह रहे हैं। कि एक बार तो वो कहते हैं कि ऐसा गुरु जिसका वर्णन पहले किया गया ये साक्षात हरि है, और वास्तव में ऐसा गुरु हो, भगवान कृष्ण का इतना पक्का भक्त हो, तो वो साक्षात हरि है, इसमें संदेह नहीं है, वो है। लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है उसका, सभी शास्त्र और साधु कहते हैं, और वो स्वयं गुरु भी कहता है, तीन प्रमाण कि वह प्रिय एवतस्य, वो प्रभु का प्रिय ही है, प्रभु नहीं है, वो भगवान नहीं है, भगवान का दास है। यही गुरु का गुरुत्व है। वास्तव में गुरु को ऐसे भ्रम में नहीं डाल देना चाहिए, हमारा गुरु भगवान है, ये है वो है, नहीं तो संसार में वैष्णवों की बात तो छोड़ दीजिए, जो लोग कोई चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन नहीं करते हैं, राधा कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, उनको भी लोग भगवान कहना चाहते हैं, बल्कि ऐसे लोगों को ज्यादा भगवान कहते हैं, बहुत जोरदार भगवान टाइटल मिलता है चारों तरफ। तो हम भक्तों को इस अज्ञान से बचना चाहिए, क्योंकि हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत बड़े बड़े आचार्यों के उपदेशों को सुन रहे हैं, सिर्फ थर्ड क्लास के लोगों का नहीं सुनते हैं। बस भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है। कहीं कहीं ऐसे ऐसे मंदिर है जहां केवल मनुष्य का मूर्ति बैठा करके रखा गया, कोई भगवान की चर्चा ही नहीं। श्री राधिका माधवयो का कुछ अर्थ होता है ना, उस किसी को भी राधा माधव कह दो, किसी भी विग्रह को, कहीं भी कुछ भी ऐसे। तो इस प्रकार से कौन सी बात पर मैं इधर बोलने लगा, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे संप्रदाय में यह सबसे ऊंची वस्तु है, तो उसके लिए अधिकार भी, अधिकारी भी ऊंचा चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबसे ऊंची वस्तु है इसीलिए हम वही करेंगे, अपने ट्रैक जो है उस पर चलना चाहिए। और मान लीजिए आप कार लेकर के हरिद्वार से दिल्ली चले और कहें तो हवाई जहाज तो किसी भी अवरोध को नहीं मान रहा है, लाल सिग्नल को चाहे किसी को नहीं गिन रहा है, तो मैं भी अब उसी के समान चलूंगा। अरे वो दूसरी जगह पर, उसकी ऊंचाई दूसरी है और हवा में जा रहा है, आप रोड पर जा रहे हैं तो रोड के नियमों के अनुसार चलना होगा ना। इसके देखा देखी खूब स्पीड में चले और धड़ाम से गिर गार करके बस खत्म, उसके लिए अपना ट्रैक चाहिए, अपने अधिकार चाहिए, किस पर चलना है हमको। रोड पर भी चलने वाले वाहनों के लिए अलग अलग स्पीड है, अलग अलग ढंग है। रेल चलती है लोहे के ट्रैक पर, बसें दूसरी तरफ से चल रही हैं, कई भेद है। तो अपनी स्थिति को समझ करके उसी पर आगे बढ़ना चाहिए, अवश्य हायर लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन साधना जो करनी है तो अपनी बिल्कुल अपने ज्ञान के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री है तो स्त्री भजन करेगी भगवान का, लेकिन हूबहू पुरुष जैसे करते हैं वही वो नहीं कर पाएगी सब कुछ। मान लीजिए गाड़ी भी चलाना है आजकल, तो हम बहुत कम देखते हैं कि स्त्रियां ड्राइव करते हुए जा रही हैं, पुरुष ड्राइव करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कमजोर हैं इसलिए ड्राइव नहीं करती है। लेकिन ऐसा कुछ भेद है तो भक्ति में भी जप के विषय आदमी भेद नहीं है। जैसे महामंत्र जपना है स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सेम जपेगा, वो सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, सेम जपेगा। लेकिन फिर भी कुछ भेद है, वही ब्रह्मचारी गेरुआ कपड़ा पहनेंगे, सन्यासी गेरुआ कपड़ा पहनेंगे, गृहस्थ सादा पहने। कोई ये नहीं कहता नहीं वस्त्र में क्या है, कोई कुछ भी पहने करो, अस्त व्यस्त स्थिति होती है, कुछ भी करो पहनो। और सन्यासी चाहे तो दो चार औरत रह करके गृहस्थी बसा सकता है, और गृहस्थ को चाहिए फ्री घूमो, प्रचार करो। कोई भेद नहीं है भक्ति, क्यों नहीं भेद है। सन्यासी का ट्रैक दूसरा है, गृहस्थ का दूसरा है, उसे अपने मर्यादा में ही रहना चाहिए। तो उसी में व्यक्ति आगे बढ़ता है। जैसे अपने ट्रैक में रहकर अपने लाइन पर चल करके कोई भी वाहन सिद्धि को प्राप्त करता है, पहुंचता है, उसी तरह से हमें करना चाहिए। पर वास्तविक लक्ष्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। वास्तविक लक्ष्य तो है श्री कृष्ण प्रेम, भगवान में अनुराग हो जाए, तो उसके लिए सब साधनाएं हैं। मुझे अभी भी पकड़ में नहीं आया कहां से छूट गया। हाँ ठीक ठीक। हाँ तो मैं वो जूथ का वर्णन कर रहा था, सॉरी। हाँ, श्री राधिका माधव को परस्पर मिलाने में गुरु की जो युक्ति है, युक्ति क्या है? मानसी युक्ति। और ऐसा नहीं है कि नंद गांव से कृष्ण को पकड़ कर लाए और बरसाने से राधा रानी को और संकेत में मिला मिलाकर ये सब मानसी कर्म गुरु करता है। मानसी ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी करीबे, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था रघुनाथ दास गोस्वामी, मानसी सब कुछ करना, इस मानसी सेवा में एक्सपर्ट होता है। और यह सबसे ऊंची साधना है। तो मैं यह इस बात पर कह रहा था कि ऊंची है परंतु अपने अपने अधिकार से ही धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। पर कम से कम लक्ष्य का ज्ञान तो हो। तो यहां वर्णन किया जा रहा था कि एक गोपी ने श्रीकृष्ण के कर कमल को अपने अंजलि में लिया और दूसरे ने, जिसका नाम श्यामला है, भगवान के बांह को अपने कंधे पर रखा। उन बांहों की शीतलता और सुगंध से वह बिल्कुल पुलकित हो गई। ऐसा वर्णन है रासलीला में, महारास में, कि कोई गोपी प्रियतम श्याम सुंदर के भुजाओं को अपने कंधे पर ली, नाचते नाचते, अभी नाच रहे थे, अभी नाच रहे थे, वो इसके बाद चुंबने लगी भुजा को, चुचुम्बा, भुजा के सुगंध से और उसके सौ कुमार जैसे शीतलता से आकृष्ट होकर के वो चुम रही थी। नाचते हुए भगवान इतने मधुर हैं, इतने शीतल सुगंधित और सुंदर, गोपी नाचते नाचते चुम रही। तो यहां उसने भगवान के बांह को अपने कंधे पर रखा। काचिदंजलिना गृहणा तन्वी तांबुल चर्वितम। कोई दूसरी तन्वी, तन्वी से यहां विशेष तात्पर्य है कि जो तनु हो गई थी श्याम सुंदर के विरह में, दुबली हो गई थी, क्षीण हो गई थी, यह साइब्या नाम की गोपी है चंद्रावली जी के जूथ की। तो वह भगवान के चबाए हुए पान को अंजलि में ले ली। नागर शेखर श्याम सुंदर वृंदावन में विहार करते हैं तो योग माया के द्वारा, चाहे श्री वृंदा देवी के द्वारा, क्षण क्षण में तैयार किए हुए तांबूल चबाते रहते हैं। नए नए जहां भी अभी प्रश्न होता है कि उधर गए थे तो उधर उनको बीटिका कौन दिया, कौन पान खिलाया। श्री कृष्ण कभी अकेला नहीं है, वृंदा टवी वृंदा देवी अपने घर में वृंदावन में सारी व्यवस्था रखती, सब कुछ सजा हुआ इस पर ब्रह्म के लिए, किसी वस्तु की कभी कोई कमी नहीं। आगे वर्णन आएगा कि गोपियों ने अपने अपने ओढ़नी को श्याम सुंदर के लिए आसन बनाया, सारी गोपियां, और ऊंचा आसन हो गया जिसे श्याम सुंदर के दर्शन, श्याम सुंदर का दर्शन सुकर हो, सुविधापूर्ण हो, ऊंचा पर बैठा है। बालू का टीला नहीं था वहां, लेकिन ओढ़नी को सजा करके ऊंचा किया। तो श्रीपद जीव गोस्वामी एक प्रश्न उत्थापित करते हैं, तो क्या गोपियां बिना ओढ़नी के हो गई? नहीं, उन्होंने श्याम सुंदर को बिछाया अपना ओढ़नी, लेकिन वृंदा देवी तत्काल ही सबके लिए ओढ़नी प्रस्तुत कर दी, सब ओढ़नी ओढ़ी हुई है। वह अप्राकृत जगत है, वहां कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि अब ये कपड़ा नहीं है तो कहां से आएगा, सब कुछ चिन्मय जगत है, तुरंत उपस्थित हो जाता है, कोई भी गोपी बिना ओढ़नी के नहीं। ओढ़नी नई नई हो गई, लेकिन उनकी ओढ़नी जिसमें उनके आंसू लगे थे, पीक लगे थे, अंजन लगा था आंखों का, रोते रोते आंसू से भींगे थे और स्तनों का केसर लगा हुआ था, उस आसन पर श्री भगवान विराजे बहुत प्रेम से, जो योगियों के हृदय में भी मुश्किल से आते हैं, बैठते नहीं हैं, वे आसन की कल्पना करते हैं योगी लोग, यह गच्छ यह तिष्ठ, यहां आइए यहां बैठिए, अपने हृदय का ध्यान करते हैं कि यह कमल के समान खिला हुआ है और इस परम सुंदर हृदय कमल पर भगवान अपना चरण कमल रख, लेकिन शायद ही भगवान उस कमल पर आते होंगे। पर गोपी जनों के इस प्रेममयी ओढ़नी पर आनंद के साथ बैठ, क्योंकि वो पहना हुआ ओढ़नी था, यूज किया हुआ, लेकिन भगवान के लिए वही सबसे ज्यादा सुखद है, क्योंकि प्रेम के आंसू से वो कहीं कहीं गीला था, पोंछा हुआ था आंसू, और स्तन के केसर लगे हुए थे। आंसू जब स्तन पर गिर रहे थे तो पतली कंचुकी थी, उसको भिंगो करके और कंचुकी से पार हो रहा था उसका द्रव, केसर द्रव, तो वहां पर ओढ़नी सटती थी, तो उसके कारण कहीं कहीं गीला कहीं पीला इस तरह से दिख रही थी ओढ़नी, और आंसू और काजल भी कहीं कहीं लगा था। इस तरह से गोपियों के देह में ओढ़नी पर श्री भगवान बैठ गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा, मतलब जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि नागर शेखर श्रीकृष्ण रसिक शेखर, उनकी सारी शक्तियां उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं सब समय, वे अच्युत हैं। ऐसा नहीं है कि कोई योग शक्ति या वृंदा देवी कोई भी चिन्मय शक्ति भगवान की सुप्त हो गई हो या कहीं विश्राम कर रही हो या ध्यान न रख रही हो, निरंतर सेवा में सजग रहती है। गोपियों के लिए क्या जरूरी है, श्री कृष्ण के लिए क्या जरूरी है, कृष्ण क्या इच्छा करते हैं, क्या संकल्प करते हैं, उनके संकल्प करने से पहले से ही सब कुछ उपस्थित रहता है। तो श्री गोपियों का जब महारास प्रारंभ हुआ तो उसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि गोपियां सज धज करके तैयार हुई, बिल्कुल नया अलंकार, हल्का हल्का अलंकार जिसमें पायजेब और बाजूबंद और कई प्रकार के अलंकार नहीं, जो नाचने में बाधक हो वैसा अलंकार नहीं, और नया लहंगा, नई ओढ़नी, दिव्य सब कुछ चिन्मय सारा उपस्थित हुआ। पीने के लिए अद्भुत पेय रस मिला, तांबूल और अनेक प्रकार की वस्तुएं उनको श्रृंगार के लिए, तिलक करने के लिए, और सब उपस्थित हो गई वहां। सबसे सुंदर तेल, कंघी, दर्पण सब कुछ उपस्थित हुआ, नया नया बिल्कुल, और गोपियों ने उसको पहना, वो सब श्रीकृष्ण का दिया हुआ। श्रीकृष्ण अपने हाथ से, अपने हस्त कमल से सखियों को दे रहे थे, सजा रहे थे। ये महाराज के पूर्व इस तरह से सज धज करके तैयार हुए तो उनके अंतरंग भक्त देवता सब आकाश में बाजे बजाने के लिए प्रस्तुत हो गए महाराज। तो ये सब भागवती सृष्टि है, भगवान के संकल्प से होता है। तो उस गोपी ने श्रीकृष्ण के चबाए हुए पान को लिया, क्यों इसकी इच्छा हुई? तन्वी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह विरह से क्षामा हो गए थे, दुर्बल हो गए थे, तो उसने ये विचार किया कि प्रियतम के मुख का ये महारसायन जब मैं मुख में लेकर के चबाऊंगी और इस रस को भीतर ले जाऊंगी तो मैं बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हो जाऊंगी, क्योंकि उसके प्रभाव का उसने अनेकों बार आस्वादन किया है। भगवान श्री कृष्ण का वो चबाया हुआ पान, बताइए उसका कौन मुकाबला कर सकता है संसार में? कौन सा ऐसा अमृत है जिसके साथ उसकी उपमा दी जा सकती है? तो इससे आशय सभी कि मैं हृष्ट पुष्ट हो जाऊंगी, उस गोपी ने लिया चर्बित तांबूल। कैसे लिया? क्या मांगा? नहीं मांगा नहीं, वो उपस्थित हुई और उसने ऐसे हाथ किया तो श्याम सुंदर समझ गए। एक प्रश्न होता है कि ये कहीं हाथ से क्यों नहीं ले लिया? तांबूल कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, श्रीकृष्ण के मुख पर ऐसे रखती ले लेती। जीव गोस्वामी जी कहते नहीं नहीं, उसका कोई न कोई रस चू जाता, स्खलित हो जाता, इसलिए दोनों हाथों को बांध करके अच्छा से ली। केवल इशारा काफी हुआ, श्याम सुंदर तुरंत समझ गए। जब उसने ऐसे मुख के पास हाथ किया तो उसने चबाया हुआ पान दिया, तत्काल का ही चबाया हुआ, जेव कत्ते अभी बचा हुआ था, चूर्ण था लेकिन बचा हुआ था, रस सहित तांबूल भगवान अपने प्रिया के अंजलि में दिए और वह लेकर के तुरंत चबाने लगी। श्याम सुंदर कभी कभी तो अगर कोई गोपी मांगती है कि हे प्रियतम हमको अपना चबाया हुआ पान दीजिए, हाथ जोड़ती है तो कहते नहीं नहीं हाथ नहीं, आप अपना मुख खोलिए मैं उसमें डालता तो इस तरह से देते हैं। इन सब लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो कोई गोपी जिसका नाम साइब्या है वह भगवान के चबाए हुए पान को ली। एका तदंग्रि कमलम संतप्ता स्तनयोरधात। और चंद्रावली जी के जूथ की पद्मा नामक सखी श्रीकृष्ण के अंग्रि कमलम चरण कमल को अपने स्तनों पर रखी। स्तनयो अधात, जैसे पहले से सारी गोपियों के मन में मनोरथ हो रहा था, अपने स्तन पर रखी। क्यों? संतप्ता, वो भगवान के विरह से और चरणों में जो दुख हो रहा था उस दुख से संतप्त थी, दुखी थी, तो अपने को शीतल करने के लिए वह श्रीकृष्ण के दोनों चरणों को अपने वक्षस्थल पर कर ली। एका तदंग्रि कमलम संतप्ता स्तनयोरधात। तो यह प्रश्न होता है कि वही गोपी जो पहले श्रीकृष्ण के चरण कमल को स्तन पर नहीं रखी थी आज क्यों रखी। एक उक्ति से श्रीपाद हरिश्वर जी इसको कह रहे कारण है। गोपियां कहती हैं कि हमारा स्तन कर्कश है, कठोर है, और हम इस पर बहुत डरते हुए आपके चरण कमलों को इस पर रखती हैं। इसका अर्थ है कि बहुत रेयर रख पाती थी, भय था कृष्ण के चरणों में चोट न लग जाए। तो यहां क्यों भेंट होते ही उसने रख लिया और कैसे रखा, इसमें श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी सखी के, जैसे पहले कहा गया, किसी सखी के हाथ का और कंधे का अवलंबन लेकर के वे खड़े हैं, तो कोई गोपी साइब्या आकर के भगवान के सामने बैठ गई और बैठ करके चरणों को सहलाने लगी, तो श्रीकृष्ण स्वाभाविक ही एक पैर से खड़े होकर के एक पैर को दे दिए उसके छाती के ऊपर वक्षस्थल पर, वो पकड़ करके और सहलाने लगी, मानो चरणाम्बुज से अपने को शीतल कर रही है, वो संतप्त थी। लेकिन वास्तविक उसका उद्देश्य था चरणों को सुखी करना, भगवान के चरणों में जो पीड़ा हुई थी, संभावना की थी, वन भ्रमण किए हैं तो स्तन पर रह करके उसे सहलाने लगी, मसाज करने लगी, पकड़ कर और श्री कृष्ण ऐसे खड़े हैं। अथवा जैसा पहले तत्रोप विष्णु भगवान से ईश्वरों, बाद में वर्णन आता है भगवान जमुना जी के पुलिन पर बैठे, तो लगता है कि किसी ऊंचे स्थान पर वो बैठे हैं, और जब ऊंचे स्थान पर बैठे और दोनों ओर से सखियां घेर ली, कोई उनके भुजा को पकड़ी, कोई बांह को, कोई इस तरह चारों तरफ से कोई कुछ सेवा कर रही है, कोई सेवा, कोई पंखा झल रही है, कोई पानी लेने के लिए गई, सब कुछ उपस्थित था वहां, किसी भी वस्तु की कमी नहीं। तो श्रीकृष्ण जब वहां बैठे ऊंचे पर, तो वह सखी चरणों के पास बैठ गई और चरण सहलाना चालू की, और उसने चरणों को लेकर के अपने वक्षस्थल पर धारण किया, धारण करके बहुत देर ऐसे रुके रहे। तो इस प्रकार गोपियों की इस प्रेम सेवा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो कभी कभी हमें अपने भाग्य पर बहुत गर्व होता है कि भगवान ने यह अवसर दिया इसे पढ़ने के लिए और सहज अधिकार उस दृष्टि से हम लोगों का है कि हमारे संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यगण जैसे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, ये सब लिखे हैं इस लीला को, और उसी भूमि में रह करके जहां ये लीलाएं हुई हैं, होती रहती है नित्य लीला, ब्रज में रह करके और निरंतर गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्न, इसी भाव में मग्न रहते थे और उन्होंने साक्षात्कार करके लिखा है। तो हम लोगों का तो इतना ही बहुत बड़ा भाग्य है कि ये हम लोगों को पढ़ने को और सुनने को मिल रहा है, जबकि ये हमारी बपौती कह सकते हैं इसको, ये मोनोपोली अपना है, अपने इनहेरिटेंस। उसी संप्रदाय के हम लोग हैं, श्रील प्रभुपाद जी उसी परंपरा में आते हैं, और सुलभ है, भगवान ने भारत वर्ष में जन्म दिया है, उस पर भी गंगा जी सुलभ हैं, जमुना जी हैं, वृंदावन है, और बहुत बड़े भाग्य की बात है कि हम अनेक हमें अनेक वैष्णवों का संग प्राप्त होता है, और जो भगवान कृष्ण के पथ पर चलने वाले हैं, ब्रह्म के पथ पर बढ़ रहे हैं, उन लोगों के साथ बैठ करके भगवान कृष्ण की चर्चा करना एक और अधिक सौभाग्य की बात। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं वास्तव में कि भगवान कृष्ण ऐसे पढ़ने का मौका दे रहे हैं, और ये आप लोगों की कृपा है, आप लोग जुटे हुए हैं श्री कृष्ण को पाने के लिए, और यही कृष्ण की लीला ही आधार है, इसी के द्वारा कृष्ण को पाया जा सकता है। तो हम यहां पर विराम देते हैं और फिर दूसरे सिटिंग में शेष कथा होगी। अभी तो राधा रानी से मिलन हुआ नहीं, तो ऐसे ही क्रोध में देखती ही रह गई अभी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।